खुशी, आनंद और शक्ति से परिस्थितियों को गुजारने। ओम शांति।
मेडिकल विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज प्रेजेंट्स अ 3-डे माइंड बॉडी मेडिसिन ई कॉन्फ्रेंस, स्पिरिचुअल डायमेंशंस इन हेल्थ केयर, द टाइम इज नाउ।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन के इस सुबह के सत्र में। मैं हूं श्रीनिधि और पिछले 2 दिनों से जो कॉन्फ्रेंस में बड़ी ही मजेदार और गहरी बातें हम सब ने सुनी हैं, समझी हैं, वो एक नया आयाम, एक नई दिशा हमें दे रही है और माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ही यही है। इस सुबह के सत्र में हम कुछ ऐसे ही नए विचारों को सुनेंगे और इन विचारों को साझा करने के लिए हमारे साथ कुछ ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स और उनके जीवन के अनुभवों के साथ साथ जो विजडम उन्हें मिला है उसे काम पे लगाकर लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। इस सेशन के पहले वक्ता के रूप में हमारे साथ डॉक्टर मोहित गुप्ता जी हैं, जो प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, जीबी पंत पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। उनका विषय है अनरैवलिंग द साइंस ऑफ माइंड, मेडिटेशन एंड बिलीफ। विषय सुनकर ही हैरानी हो रही होगी आपको भी, और शायद ये विषय इसीलिए इतना रोचक भी है। आइए सुनते हैं डॉक्टर मोहित गुप्ता जी से।
ओम शांति। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक राजा ने एक पहेली सारी जनता के सामने रखी। तो एक नवयुवक था, उसने अपनी मन और बुद्धि का उपयोग करके राजा की उस पहेली का जवाब दे दिया। तो राजा ने कहा कि मैं तुमको जो चाहोगे वो तुम्हें दूंगा। तो उस लड़के ने कहा कि भाई मुझे अपने लिए जमीन चाहिए। तो राजा उसको एक खुले मैदान में ले गया और खुले मैदान में ले जाकर उससे कहा कि बेटा अभी सवेरे का समय है और ये खुला मैदान तुम्हारे सामने है, तुम जितना भाग सकते हो भाग लो, लेकिन एक ही शर्त है कि जब तुम शाम हो जाए तो शाम ढलने से पहले तुम्हें इसी जगह जहां से तुम आरंभ कर रहे हो यहां पर आकर तुम्हें विराम लेना होगा, और जितना भूमि, जितना लैंड तुमने उस समय कवर किया होगा वो भूमि तुम्हारी हो जाएगी। तो वो लड़का तो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा वाह, ये तो बहुत ही उत्तम बात है, अब तो मेरे को मन चाही भूमि मिल जाएगी। तो उस लड़के ने दौड़ना आरंभ किया। दोपहर हुई, धीरे धीरे समय बीतता गया, वो अपनी पूरी जी जान से दौड़ रहा था, उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर है। भागता रहा भागता रहा, धीरे धीरे शाम होने को आई, लेकिन अंदर से उसका मन बार बार यही कह रहा था कि थोड़ा और दौड़, थोड़ा और दौड़, ताकि मैक्सिमम या जितनी ज्यादा जमीन तू ले सकता है वो जमीन तुझे मिल जाएगी। लेकिन जब शाम बहुत होने को हुई तो उसके मन में सडनली ध्यान आया कि राजा ने उसके सामने शर्त रखी थी कि उसे उसी जगह पर वापस भी पहुंचना है। वो घबरा गया, उसका मन चिंतित हो गया और वो बहुत तेजी से मुड़ा और वापस भागने लगा। उसका सांस फूलने लगा, जैसे तैसे गिरते पड़ते वो अपने उसी स्थान पर वापस आया। पसीने से तर था, उसका तन बिल्कुल शिथिल हो चुका था, और जैसे ही वो उस स्थान पर आया उसने थक कर अपने प्राण दोस्तों त्याग दिए, और अल्टीमेटली उसको केवल 3 गज भूमि की ही जरूरत पड़ी जहां उसके शरीर को दफनाया गया। दोस्तों, आज उस व्यक्ति की तरह ही आज मानव के मन की हालत है। आज का मानव का मन जो है अपने जीवन का संयम खो बैठा है। आज अगर मानव चाहे तो उसका मन और उसकी बुद्धि यदि एक ट्यूनिंग, एक सिंक्रोनिसिटी के अंदर कार्य करते हैं तो वो अपने जीवन में मिरेकल्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन वही मानव का मन अगर वो उसके ऊपर अपना कंट्रोल छोड़ देता है, अगर वो उसके ऊपर अपनी लगाम को ढीली कर देता है तो वही मानव का मन उसके लिए अभिशाप बन सकता है या उसको अपना गुलाम बना सकता है। तभी दोस्तों किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि माइंड इज अ ब्यूटिफुल सर्वेंट, मन एक बहुत सुंदर नौकर है, बट अगर हम उसके ऊपर अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं देन माइंड टर्न्स इनटू अ वेरी डेंजरस मास्टर। तभी आज अगर हम अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में खुशी और शांति चाहते हैं दोस्तों, तो बहुत जरूरी है कि हमें अपने मन को अपना मित्र बनाना पड़ेगा, अपने मन पर संयम रखना पड़ेगा। हमारे मन के अंदर दोस्तों बहुत अद्भुत शक्ति है। इस मन की शक्ति के ही द्वारा आज मानव ने कितनी उन्नति की है। अपने 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 लिए बड़े बड़े घर बनाए, अपने लिए धन और दौलत इकट्ठी करी, अपने लिए बड़े बड़े बिजनेस एस्टैब्लिश किए, लेकिन आज उन बिजनेसेस के अंदर, उन बड़े बड़े घरों के अंदर रहते हुए मैं आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या इतनी उन्नति के बाद भी आज मानव का मन खुश है? अपने आप से पूछें कि पूरे एक दिन के अंदर ही कितना समय हमको मिलता है कि हम खिलखिलाकर हंसते हैं, अपने जीवन में उन्मुक्त हंसी हम अपने जीवन में लाते हैं। कभी कभी हमारे मन के अंदर हमारी हंसी के ऊपर भी एक प्राइस टैग लग गया है। आज का मानव अपनी खुशी, अपनी हंसी को भी नाप और तोल कर चलता है। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज की इस यात्रा में मैं आज आपको मन की शक्ति, मन के विचारों की शक्ति और मेडिटेशन के द्वारा हम अपने मन को कैसे संयम में ला सकते हैं, इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे फिनोमिनम्स क्या है, आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस इंटरेस्टिंग सेशन में। आज ऐसे आंख खोल देने वाले सेशन में आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि इस यात्रा में आपको अनेक पड़ाव मिलेंगे, आपको अनेक प्रकार की एग्जाम्पल्स सुनने को मिलेंगे जो रियल लाइफ के साइंटिफिक एग्जाम्पल्स होंगे, जहां आपको अनुभव होगा कि चाहे हमारे पास स्वयं का प्रेशर हो, चाहे हमारे पास हमारे फैमिलीज का प्रेशर हो, हमारे प्रोफेशनल लाइफ का प्रेशर हो, आज हमारे पास सोशल प्रेशर हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का प्रेशर हो, लेकिन इन सब प्रेशर्स को समझते हुए भी हम आज समझ जाएंगे कि इनको परिवर्तन करना हमारे वश में नहीं है, लेकिन जब स्वयं मानव का मन अपने आप को शक्तिशाली बना देता है, अपने मन को हम संयम में ले जाते हैं, तो हमारे जीवन का कंट्रोल अपने पास आने के कारण हम अपने जीवन में खुशी और शांति के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारा जीवन जो है हमारे चेतन मन से नहीं, हमारे अर्ध चेतन मन से कंट्रोल होता है। अवर माइंड इज बीइंग कंट्रोल्ड नॉट बाय अवर कॉन्शियस माइंड बट बाय अवर सबकॉन्शियस माइंड। 95% जो आज आप अपने दिनचर्या में करते हैं, अपने जीवन में करते हैं, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ जो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रखी है। आज साइंस ये कहती है कि एक बच्चे की प्रोग्रामिंग, एक नवयुवक की जो प्रोग्रामिंग होती है, बाय 35 ईयर्स प्रैक्टिकली कंप्लीट हो जाती है। वी बिकम अ सेट ऑफ एटीट्यूड्स, प्रिंसिपल्स, हैबिट्स एंड अवर ओन बिहेवियर्स। अवर ब्रेन इज हार्ड वायर्ड, वो एक प्रॉपर चैनलाइज हो जाता है, उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो आज अपनी प्रोग्रामिंग को हम लोग देखें कि क्या मेरी प्रोग्रामिंग के अंदर, जो मैंने अपने व्यवहार की, अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग की है, अपने संकल्पों की प्रोग्रामिंग की है, अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की है, क्या उसके द्वारा मेरे जीवन में मुझे खुशी और शांति की प्राप्ति सदा होती है, या छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाना, गुस्सा आ जाना, इरिटेशन आ जाना, स्वभाव में ऊंचा और नीचा, एक दूसरे को एक्सेप्ट ना करना, व्यवहारों के अंदर भिन्नता आना और कभी कभी एक दूसरे से मायूस होकर बैठ जाना, क्या ऐसे चीजें हमें जीवन में अनुभव होती हैं? और दोस्तों, यदि अनुभव होती हैं, तो आज आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में अपनी इनोसेंट स्माइल, हमारी वो खोई हुई जो खुशी है, जो शांति है, उसको हम लोग दोबारा प्राप्त करें। और इसको प्राप्त करने की जो शक्ति है, इसको प्राप्त करने की जो चाबी है दोस्तों, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हम सबके पास है। ट्रांसफॉर्मेशन इज दी की। अगर हम बाहर परिवर्तन देखना चाहते हैं, अगर हम चेंज बाहर अपने माहौल, अपने परिवार, अपने व्यवहार में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने विचारों को परिवर्तित करना बहुत आवश्यक है। आज केवल इम्बैलेंस के कारण ही हमारे जीवन में नेगेटिविटीज आ गई हैं, लेकिन जब आज हम अपने मन की शक्ति को पहचान लेते हैं, अपने मन के अंदर संयम और बैलेंस ले आते हैं, तो यही मन हमारा मित्र बनकर हमारे जीवन में बहुत आनंद हमको प्रदान करता है। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि आज जिस इमरजेंसी मोड में मानव का जीवन चल रहा है, सवेरे से लेकर शाम तक ऐसा लगता है मानव भाग रहा है, दौड़ रहा है, उस इमरजेंसी मोड से बाहर आने के लिए आवश्यकता है कि हम अपने मन के संकल्पों को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें। और सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग हमारे विचारों से होती है, हमारे मन के उत्पन्न संकल्पों से होती है। और एक मानव मन जो है एक दिन में 50 से 70 हजार संकल्प उत्पन्न करता है, और आप सोचिए कि यदि उन संकल्पों में से 95% हमारे विचार जो हैं, हमारे थॉट्स जो हैं, वो नकारात्मक हैं, हमारे रिपीटेटिव थॉट्स हैं, पर्पजलेस थॉट्स हैं, बस ऐसे ही मैं सोच रहा था तो मैंने सोच लिया, ये निर्णय ले लिया, ऐसे ही मेरे मन में विचार आया तो मैंने कह दिया, अगर इसी प्रकार के हमारे वेस्ट नेगेटिव थॉट्स रिपीटेटिवली चलेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या मेमोरी जाएगी, उसकी प्रोग्रामिंग किस प्रकार से होगी, उसकी प्रोग्रामिंग भी इसी प्रकार से होगी, वो भी नेगेटिव सोचेगा, वेस्ट थॉट्स जनरेट करेगा, पर्पजलेस थॉट्स जनरेट करेगा। तो हम अपने जीवन में क्या खुशी और शांति को प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों? मेरे ख्याल से हम लोग नहीं कर पाएंगे। आज केवल 5% मानव के विचार जो हैं, 50,000 विचारों में से केवल 1 से 2 हजार विचार जी जो हैं हमारे, वो पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, पर्पजलेस थॉट्स होते हैं, यूजफुल थॉट्स होते हैं। तो आप सोचिए कि अगर केवल 5% हमारे विचार सकारात्मक और पॉजिटिव हैं तो हमारी लाइफ की जो कॉन्सिक्वेंस है, हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है और हमारे ब्रेन की जो सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो किस प्रकार की होगी, हमारा व्यवहार किस प्रकार का होगा, जरूर उसमें कुछ ना कुछ नकारात्मकता होगी। दोस्तों इस 5% जो सबकॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियस माइंड्स के पॉजिटिव थॉट्स हैं, आज इनकी प्रोग्रामिंग को हमें और बढ़ाकर, इसकी संख्या को और बढ़ाकर अपने विचारों को सकारात्मकता प्रदान करनी है, अपने विचारों को शांति प्रदान करनी है, उनको एक नई दिशा निर्देश, एक नई डायरेक्शन देनी है। और ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपका विचार, आपका एक एक विचार दोस्तों आपका व्यवहार बनाता है, आपका एक एक विचार आपके जीवन में आपको एक चॉइस देगा और वही चॉइस जो आपको मिलेगी वही आपके जीवन में आपका बिहेवियर, आपके व्यवहार को डिटरमिन करेगी। तो अगर सकारात्मक विचार है तो सकारात्मक चॉइस होगी, सकारात्मक चॉइस है तो सकारात्मक बिहेवियर होगा, सकारात्मक बिहेवियर है तो सकारात्मक फीलिंग्स जनरेट करेंगे, हमारे जीवन के अंदर जो इमोशंस हैं वो पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे, उसके अंदर एक पॉजिटिव मेमोरी क्रिएट करेंगे और वही पॉजिटिव मेमोरी हमको एक पॉजिटिव हैबिट रिवील करेगी और यही हमारे प्रोग्रामिंग का आरंभ है। आप सोचो अगर अपने जीवन में नए आयाम हमको एक्सप्लोर करने हैं, अगर हम अपने जीवन को खुशी की डायरेक्शन में, शांति की डायरेक्शन में आनंदित देखना चाहते हैं तो विचारों को भी आनंद से परिपूर्ण करना पड़ेगा। और आज ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि आज साइंस ये क्लियरली प्रूव कर चुकी है कि आपका एक एक विचार, आपका एक एक थॉट्स जो है वो आपके मन में नहीं रहता है। आज दो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स या मशीन्स के द्वारा आज क्लियरली मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ईजी की मशीन आपने देखी है जिसमें हम अपने ब्रेन पर इलेक्ट्रोड्स लगा लेते हैं और ब्रेन पर इलेक्ट्रोड्स लगाकर ब्रेन के सिग्नल्स को मैप किया जाता है और उस मैपिंग सिग्नल्स के द्वारा हम ये डिटर्मिन कर सकते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स शांति से परिपूर्ण है या हमारे थॉट्स के अंदर गतिशील या गति बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है। लेकिन आज मैग्नेटो एनकेफेलोग्राम जो एक नई मशीन है वो हमारे ब्रेन को बिना टच करे हमारे ब्रेन के थॉट पैटर्न को मैप करती है और ये शो करता है कि जब वो मशीन हमको टच नहीं कर रही लेकिन केवल उसके अंदर एक आम व्यक्ति की तरह बैठने से वो हमारे कंप्लीट ब्रेन को मैप कर सकती है तो ये शो करता है कि दोस्तों हमारे विचार हमारे केवल मन, हमारे मस्तिष्क, हमारे ब्रेन में नहीं रहते लेकिन हमारे विचार इस एनवायरमेंट में भी रेडिएट करते हैं जो आज साइंस के साधनों के द्वारा हम लोग इजिली कैच कर पाते हैं। और यही थॉट्स जो बाहर रेडिएट करते हैं यही आज ना केवल हमारे शरीर, हमारे बॉडी, हमारे मन की प्रोग्रामिंग करते हैं लेकिन समस्त विश्व पर भी एक गहरा असर डालते हैं। आज मैं आपको इसके पीछे इंटरेस्टिंग साइंस भी बताना चाहूंगा कि जब हम अपने मन में सकारात्मक विचार जनरेट करते हैं, जब हमारे विचार पॉजिटिव होते हैं, पावरफुल होते हैं, पर्पसफुल होते हैं तो ये हमारे ब्रेन से पॉजिटिव केमिकल्स को स्टिमुलेट करता है। पॉजिटिव केमिकल्स कौन से हैं? पॉजिटिव न्यूरोपेप्टाइड्स हैं लाइक एंडोर्फिन्स हैं और एनकेफेलिन्स हैं। जब ये पॉजिटिव हार्मोन्स हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं, हमारे बॉडी की सर्कुलेशन में जाते हैं, तो ये हमारे बॉडी को सिग्नल देते हैं और वो सिग्नल होता है हीलिंग का, वो सिग्नल होता है खुश रहने का। इसी प्रकार जब हमारे मन के संकल्प लगातार नकारात्मक होते हैं, चिंता से परिपूर्ण होते हैं, घबराहट से परिपूर्ण होते हैं, डर से परिपूर्ण होते हैं, तो ये नेगेटिव न्यूरोपेप्टाइड्स को स्टिमुलेट करते हैं। नेगेटिव न्यूरोपेप्टाइड्स क्या होते हैं? नेगेटिव न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं लाइक कॉर्टिसोल, लाइक स्टेरॉइड्स, लाइक एड्रीनलिन। और तभी आप देखते हैं कि जब व्यक्ति कोई बहुत भय में होता है, चिंता में होता है, तो उसके मन की सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भय और चिंता के अंदर हमारे सारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन में ना जाकर हमारे बॉडी के पैरों में और स्प्लैंकनिक ऑर्गन्स में जाता है। तभी जब भी कोई ऐसी नेगेटिव परिस्थिति आती है तो हम लोग क्या करते हैं? हम उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, हम पलायन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो ये नेगेटिव हार्मोन्स जो हैं, ये हार्मोन्स हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं या कभी ना कभी नेगेटिव सिग्नल दे सकते हैं। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे ब्रेन का जो सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है, जो हमारा सेंट्रल ऑर्गन है, उससे सिग्नल सदा सकारात्मक और पॉजिटिव जाना चाहिए। जब यहां से सिग्नल पॉजिटिव जाता है तो नेचुरली हमारी बॉडी प्रॉपरली कार्य में आती है और यही सिग्नल्स हम लोग बाहर भी रेडिएट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे ब्रेन का एक इमोशनल सेंटर है और हमारे ब्रेन का जो इमोशनल सेंटर है उसका पावरफुल कंट्रोलिंग सेंटर अमिगडाला कहलाता है। और जब हम लोग नेगेटिव इमोशंस जनरेट करते हैं तो ये नेगेटिव इमोशंस हमारे प्रोसेस होते हैं हमारे इमोशनल सेंटर में। और यदि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को प्रॉपरली प्रोसेस करके समझ नहीं पाए, तो हमारा इमोशनल सेंटर हमारे सोचने और समझने वाले ब्रेन के सेंटर को, जिसको हम रैशनल सेंटर कहते हैं, उसको ये ओवरपावर कर लेता है, उसको ये स्टॉप कर देता है। और तभी डर और गुस्से के अंदर हम कहते हैं भाई इस व्यक्ति से बात करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है। इसीलिए आज हम सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर जीवन को परिवर्तित करना है, अगर परिवर्तन अपने स्वयं के अंदर लाना है, अपने संसार में लाना है, अपने परिवार में लाना है, अपने समाज में लाना है, देश में लाना है दोस्तों, तो उसकी चाबी कहीं भी बाहर नहीं है। उसकी चाबी आपके पास है, उसकी चाबी हमारे पास है और वो परिवर्तन हमारे विचारों के द्वारा ही होगा। हमारा एक एक विचार आज साइंस क्लियरली प्रूव कर चुकी है हमारा भविष्य का निर्माण कर रहा है। हमारा एक एक विचार ना केवल हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है लेकिन अनेकों अनेक आत्माओं के भविष्य का भी। जिन व्यक्तियों से हम संपर्क में आते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, जिस विश्व में हम रहते हैं, जिस नेचर से हम संपर्क में आते हैं, हर एक का निर्माण हम अपने विचारों के द्वारा दोस्तों कर रहे हैं। तो आइए आज मैं आपको साइंस के द्वारा ही, क्लियरली एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन के पीछे इस साइंस क्या है, कैसे मेडिटेशन हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसी प्रकार आज उससे पहले हम ये भी चर्चा करेंगे कि आपके संकल्पों की जो शक्ति है वो इस पूरे विश्व में कहां कहां पर दोस्तों असर डालती है, कितनी शक्ति है हमारे विचारों के अंदर। आज तीन जगह हमारे विचार बहुत पावरफुल असर डालते हैं। हमारे विचार सबसे पहले हमारे स्वयं के शरीर पर एक पावरफुल असर डालते हैं। शरीर पर कहां कहां? हमारे मन, हमारे शरीर के ऑर्गन्स पर और हमारी जीन्स पर बहुत पावरफुल असर डालते हैं। इसी के साथ जो दूसरी जगह हमारे संकल्प बहुत पावरफुल असर डालते हैं वो है हमारे संबंधों में, हमारे परिवार, हमारे सोशल लाइफ पर, हमारी पर्सनल लाइफ पर हमारे विचारों का असर हो सकता है। और तीसरी जगह जो हमारे विचार असर डालते हैं वो है हमारा नेचर, हमारा भोजन, हमारा पानी और हमारा एटमॉस्फियर, हमारा माहौल जो हम क्रिएट करते हैं वहां पर भी ये पावरफुल असर डालते हैं। पर क्या मेरे कहने से ही आप इस बात को मान जाएंगे? नहीं दोस्तों, आज हम इसको साइंस के रूप से समझेंगे। आज इसको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा हम लोग समझेंगे कि कैसे अपने विचारों के द्वारा हम लोग समस्त अपने जीवन अपने शरीर को दोस्तों परिवर्तित कर सकते हैं। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोग एग्जामिन करते हैं कि हम क्या अपने विचारों के द्वारा अपनी जीन्स को चेंज कर सकते हैं। क्या जीन्स और हमारे विचारों का, संकल्पों का और हमारे जो जीन्स हमको मिलती हैं, हमारे क्रोमोसोम्स जो हमको मिलते हैं, उस पर हमारे संकल्पों का कोई असर होता है? अगर नहीं होता तो इसका मतलब तो हम सब लोग प्री प्रोग्राम्ड हैं, और अगर हम लोग प्री प्रोग्राम्ड हैं दोस्तों तो ये तो एक चिंता का विषय है, यानी हम अपनी लाइफ को चेंज ही नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब अगर जीन्स यानी मेरे परिवार में किसी को कोई हार्ट की बीमारी है, कोई और किसी प्रकार की बीमारी है, तो जेनेटिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो वो बीमारी मुझे भी कभी ना कभी आ ही जाएगी, तो ये तो ठीक नहीं हुआ। लेकिन आज साइंस ये कहती है कि भले 49% ऑफ अवर लाइफ विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स, लेकिन 51% ऑफ अवर लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस विच इंक्लूड्स अवर थॉट्स। हमारे संकल्प जो हमारे एनवायरमेंट को रचते हैं वो हमारे जीन्स पर एक पावरफुल असर डाल सकते हैं। और इसी साइंस को जो एक्सप्लोर करती है वो है साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स, अर्थात वो फैक्टर्स जो हमारे क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन वो फैक्टर्स जिनके अंदर इतनी शक्ति है जो हमारे क्रोमोसोम्स के जीन्स के एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। अर्थात कोई नेगेटिव जीन है उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, और कोई पॉजिटिव जीन है उसको स्विच ऑन भी कर सकते हैं। दोस्तों एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट डॉक्टर डीन ऑर्निश ने किया था, और ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों पर किया। जब उन्होंने 30 प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों को लिया, उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने केवल थेरेपी दी और कुछ लोगों को उस नॉर्मल थेरेपी यानी एक्चुअल मेडिसिन के साथ साथ उनको लाइफस्टाइल चेंजेस सिखाए, उनको स्ट्रेस फ्री लिविंग के बारे में बताया। और दोस्तों कुछ ही महीने बाद जब उन्होंने उनके जीन्स को स्टडी किया तो उसमें देखा गया कि जो कैंसर कॉजिंग जीन्स थी वो कैंसर कॉजिंग जीन्स सिग्निफिकेंटली डाउन रेगुलेट हो गई, और जो प्रोटीन बिल्डिंग जीन्स थी यानी हेल्दी जीन्स थी वो अप रेगुलेट हो गई। और जब सारे जीनोम का एनालिसिस किया गया तो उसके अंदर पाया गया कि 500 कैंसर कॉजिंग जीन्स एक अच्छे लाइफस्टाइल के द्वारा सिग्निफिकेंटली डाउन रेगुलेट हो गई थी। तो ये क्या शो करता है कि हमारी जीवन शैली, हमारी सोच, हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल हमारे जीन्स पर भी एक पावरफुल असर डाल सकता है। इतनी शक्ति है हमारे विचारों के अंदर दोस्तों। और ये जब उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया तो नेचुरली जो प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स जो लाइफस्टाइल अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे थे, उनकी एज, उनकी आयु एज कंपेयर टू द कंट्रोल्स वो डेफिनेटली ज्यादा थी। इसी से लीड लेते हुए दोस्तों हमने अपने यहां भी बहुत सुंदर अपने हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट्स किए। उसमें हमने सिंपली केवल 18 से 30 साल के जो नवयुवक हैं जिनको हार्ट अटैक की बीमारी थी, सोचिए 18 से 30 साल के बच्चे जिनको हार्ट अटैक हुआ था उनको हमने अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में इंक्लूड किया, जिनको डायबिटीज नहीं थी, जिनको कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, जिनको कोई डिसलिपिडीमिया यानी लिपिड का भी डिसऑर्डर्स नहीं था, और वो स्मोकिंग भी दोस्तों नहीं करते थे। और हमने उनका ब्लड सैंपल लेकर उनके क्रोमोसोम्स को एनालाइज किया। और दोस्तों जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के एंड पर एक शू लेस की तरह कैप बनी हुई होती है जिसको टेलोमियर कहा जाता है, और वो टेलोमियर जो है हमारे क्रोमोसोम्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है यानी उसको हेल्दी रखता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वो टेलोमियर ढीले होते चले जाते हैं, और इसी कारण बीमारियां उम्र के साथ साथ बढ़ती चली जाती हैं क्योंकि वो टेलोमियर लेंथ कम हो जाती है। और दोस्तों हमने उनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी किया, उनके स्ट्रेस को भी एस्टिमेट किया और उनके टेलोमियर लेंथ को भी हमने एस्टिमेट किया। और आप जानते हैं उसका रिजल्ट क्या रहा? जब हमने देखा कि उनकी उन बच्चों की जो 18 से 30 साल के हार्ट अटैक के मरीज थे उनकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी शारीरिक एज तो 18 से 30 वर्ष थी, लेकिन जब उनकी टेलोमियर एज यानी उनकी जेनेटिक लेंथ को जब हमने स्टडी किया तो उसमें दिखाया गया कि उनकी जेनेटिक लेंथ 60 से 70 साल के एक व्यक्ति के बराबर थी। आप सोचिए कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं कि शारीरिक एज तो 18 से 30 साल लेकिन अंदर की जो जीन्स है वो इतनी एजेड हो चुकी हैं, ऐसा कारण क्या था? और जब हमने फर्दर इसके अंदर डिग किया तो हमने पाया कि उन लोगों के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोसोशल स्ट्रेस था, अर्थात जो लोग मन के अंदर चिंता है, जीवन के अंदर खुशी नहीं है, पुअर न्यूट्रिशन है, परिवार के अंदर ट्रॉमा है, रिलेशंस अच्छे नहीं है दोस्तों, कभी हमारे जीवन में जब पर्पज नहीं होता है, देयर इज नो पर्पज ऑफ लाइफ, लैक ऑफ सेल्फ लव, जब ऐसे फैक्टर्स हमारे जीवन में आते हैं जो हमारे जीवन में स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, तो ऐसा होने से टेलोमेरेज जो एंजाइम है उसकी वैल्यू, उसकी लेवल्स कम हो जाती हैं और हमारी टेलोमियर लेंथ जो है वो सिग्निफिकेंटली कम होती चली जाती है। लेकिन वो लोग जो सदा जीवन में खुश रहते हैं, आनंदित महसूस करते हैं, जिनके जीवन में पर्पस है, जिनके जीवन में आनंद है, खुशी है, एक दूसरे को खुशी देते हैं, परिवार में संबंध एक दूसरे से अच्छा है, अच्छा न्यूट्रिशन खाते हैं, उन लोगों के अंदर पाया गया कि टेलोमेरेज एंजाइम जो है वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा था और टेलोमियर लेंथ वेल मेंटेन्ड थी। ये क्या शो करता है कि हमारे इमोशंस, हमारे मन के जो संकल्प है, हमारी जो भावनाएं जो संकल्पों के द्वारा निर्मित होती हैं, वो ना केवल हमको महसूसता कराती हैं लेकिन हमारे शरीर की जीन्स पर भी एक पावरफुल असर डालती हैं, पावरफुल असर डालती हैं। तभी दोस्तों एक और बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसको कहा जाता है द सेकेंड जेनरेशन हार्वर्ड स्टडी, जिसको ग्रांट एंड ग्लूइक स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। 1935 में आरंभ इस एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर, जो अब थर्ड जनरेशन इन्वेस्टिगेटर हैं, उन्होंने कुछ बच्चों को लगातार 75 साल फॉलो किया, उनकी जनरेशंस पे जनरेशंस, उनके प्रोफेशनल लेवल को, उनकी सक्सेस को, उनकी हेल्थ को, बायोकेमिकल पैरामीटर्स से, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स से, लाइफ की क्वालिटी के द्वारा उनको एनालाइज किया। और दोस्तों जब 75 साल की इस लॉन्गेस्ट अवेलेबल लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में एनालिसिस किया गया तो उन्होंने जानते हैं क्या पाया, उन्होंने पाया कि जीवन में अच्छी बड़ी और खुशनुमा लाइफ लीड करने का केवल एक ही रहस्य है, केवल एक ही रहस्य है, वो है अच्छे संबंधों का जीवन में होना। गुड रिलेशंस डोंट जस्ट प्रोटेक्ट अवर बॉडी बट दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अवर जीन्स एंड अवर ब्रेन। तभी आज बहुत आवश्यक है कि अपने संबंधों में, और ये संबंध केवल परिवार और विश्व के साथ नहीं, दोस्तों के साथ नहीं, लेकिन मेरा स्वयं स्वयं के साथ क्या संबंध है, मेरी सोच कैसी है, वही मेरे संबंधों को भी दोस्तों बनाता है। तो आज साइंस ये क्लियरली हमको इंडिकेशन दे रही है कि वी हैव द पावर टू रेगुलेट अवर जीन्स, वी आर नो लॉन्गर अ कैप्टिव ऑफ अवर जीन्स। हमारा जो डीएनए हमको माता पिता से मिलता है, जो जेनेटिक मेकअप हमको माता पिता से मिलता है, वो हमारी डेस्टिनी दोस्तों नहीं है। क्या हमारी जीन, हमारे जो संकल्प हैं, हमारे शरीर पर भी असर डाल सकते हैं, क्या बॉडी पर भी असर डाल सकते हैं? आइए हम इसको भी एग्जामिन साइंटिफिकली दोस्तों करते हैं। इसको कहा जाता है रीप्रोग्रामिंग अवर ब्रेन। अगर संकल्पों के द्वारा हमारे शरीर पर पावरफुल असर आ सकता है तो ये तो एक मिरेकल साइंस होती है। डॉक्टर एल्वारो पास्कल लियोन, जो हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर एक्सपेरिमेंट किया कुछ बच्चों को लेकर। उन्होंने उन दो ग्रुप्स के अंदर बच्चों को डिवाइड किया और डिवाइड करके उनको पियानो प्ले करना सिखाया। तो पहले ग्रुप को तो उन्होंने एक्चुअली पियानो के सामने बिठाया और पियानो के सामने बिठाकर उनको पियानो प्ले करवाया, लेकिन दोस्तों दूसरे ग्रुप को, दूसरे बच्चों को उन्होंने पियानो के सामने नहीं बिठाया, लेकिन एक कमरे में रखकर केवल उनको इमेजिन करवाया, उस पियानो के बारे में बताया, पियानो के नोट्स के बारे में बताया और ऐसा इमेजिन करवाया कि जैसे वो एक्चुअली पियानो प्ले कर रहे हों। और कुछ समय बाद, रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस के बाद, कुछ हफ्ते बाद उन्होंने उनके ब्रेन्स का स्कैन किया, ब्रेन के उस एरिया का स्कैन किया जो कि पियानो प्लेइंग फिंगर्स को कंट्रोल करता है, जो पियानो प्लेइंग फिंगर्स को कंट्रोल करता है। और जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखा तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन बच्चों ने पियानो को एक्चुअली प्ले किया और जिन बच्चों ने पियानो को केवल इमेजिन किया प्ले करना, दोनों के ब्रेन में जो पियानो प्लेइंग फिंगर्स का ब्रेन कंट्रोलिंग सेंटर है वो सिमिलरली एक्सपैंड किया, यानी उनके अंदर सिमिलर चेंजेस पाए गए। ये क्या शो करता है कि केवल हमारे सोचने के ही द्वारा, रिपीटेटिव थिंकिंग के द्वारा ही हम अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर प्लान का, यानी उसको ट्रेन कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हार्ड वायरिंग योर ब्रेन। आज लोग पूछते हैं कि क्या हम ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं, या जो स्ट्रक्चर हमको ब्रेन में मिला है वो तो हमारा फिक्स्ड है। नहीं दोस्तों, आज साइंस ये क्लियरली बोलती है कि रिपीटेटिव प्रैक्टिसिंग ऑफ एनी थॉट्स वो वैल्यू न्यूट्रल है। आप पॉजिटिव थॉट्स लेंगे तो पॉजिटिव प्रैक्टिस, नेगेटिव थॉट्स लेंगे तो नेगेटिव हैबिट्स। जिस भी प्रकार के विचारों को आप बार बार अपने जीवन में प्रैक्टिस करेंगे, उत्पन्न करेंगे, तो वो थॉट्स आपके ब्रेन के न्यूरल सर्किट्स को, उस न्यूरो सर्किटरी को पावरफुल तरीके से रीवायर कर देती है। और इस फिनोमेना को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम अपने संकल्पों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा एक्चुअली चेंज कर सकते हैं जब हम बार बार उसको रिपीट करते हैं। दैट इज वाई एक नई हैबिट को आप बनाना चाहें, अगर आप कहें कि मेरी तो ये आदत है, हम अक्सर यही कहते हैं ना, मेरी तो आदत है, मैं इसी प्रकार से करता हूं, मेरा व्यवहार इसी प्रकार का है, उसकी हैबिट ही इसी प्रकार की है। नहीं दोस्तों, अगर आप अपनी हैबिट से परेशान हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवहार से परेशान है, स्वयं वो चाहता है कि मैं बदलाव चाहता हूं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल स्टार्टिंग में 3 हफ्ते 21 दिन आपको रिपीटेटिवली पॉजिटिव संकल्प, पॉजिटिव व्यवहार विद पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम अपने जीवन में लाना है। और जब आप रिपीटेटिवली एक पॉजिटिव चीज को करेंगे तो आपकी हैबिट का एक वो शेप ले लेगा और आप देखेंगे आप एक नए रूप से, एक नए व्यक्तित्व के रूप से अपने जीवन में इमर्ज करेंगे। दैट इज व्हाई आज साइंस कहती है कि व्हाट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट आउटसाइड, जो भी आप जीवन में बाहर देखना चाहते हैं, सबसे पहले उसको अपने मन में रचना पड़ेगा, उसकी कल्पना, उसको जो एक्चुअली बिलीफ, उसकी जो रचना है उसको अपने मन में क्रिएट करना पड़ेगा। तो अपने जीवन की दिनचर्या जो है रोज सकारात्मक संकल्पों से आरंभ करें। मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं, मैं कर सकता हूं, आई एम अ ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, मेरा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो। अगर मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, मेरी मान्यताएं इतनी पावरफुल हैं, तो दोस्तों मेरे विचार मेरी उस मान्यताओं के अंदर से होते हुए जाते हैं तो इतने पावरफुल और प्योर हो जाते हैं जो मेरी डेस्टिनी को कंप्लीटली रीराइट कर देते हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम एक पावरफुल गेट है जहां हमारे विचार जो हैं वो प्रोसेस होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पेसिमिज्म को छोड़ देना है, सकारात्मकता को दोस्तों अपने जीवन में अपनाना है। क्या हमारे विचार जो हैं हमारी बीमारियों को भी क्योर कर सकते हैं, इसके तो आप सभी अनुभवी हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई इससे बात करते ही मेरी आधी बीमारी दूर हो जाती है, तो क्या होता है, उस डॉक्टर ने तो हमको कोई दवाई दी नहीं, लेकिन बात करते ही उसके विचारों से, उसके शब्दों से हमारे मन के विचार, नकारात्मकता, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, कष्ट के थॉट्स होते हैं, वो धीरे धीरे सेटल कर जाते हैं और हमको खुशी और शांति की दोस्तों अनुभूति होती है। ये शक्ति हमारे विचारों में है, ये शक्ति हमारे जीवन में है। और आज इन्हीं को साइंटिफिक रूप से डॉक्टर जेबी मॉसले ने बहुत सुंदर शैम एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा प्रूव किया। दोस्तों उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑस्टियो आर्थराइटिस के 2 ग्रुप्स को लिया, जिन लोगों को जोड़ों का दर्द रहता था, और उन लोगों को उन्होंने सर्जरी को सब्जेक्ट किया। तो एक ग्रुप को उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर एनेस्थेटाइज कर उनके नी को ओपन किया और ओपन करके एक्चुअली सर्जरी की। लेकिन दोस्तों दूसरे ग्रुप को उन्होंने फिर ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उनको एनेस्थेटाइज किया, उनके नी को ओपन किया, लेकिन उतना ही टाइम लगाते हुए बिना सर्जरी किए उन लोगों के नी को क्लोज कर दिया। लेकिन उन लोग, जब वो लोग बाहर आए, वो मरीज, उनको ये बताया गया कि उनकी सर्जरी हो गई है। तो दोनों ग्रुप्स को एक्चुअली मालूम था कि उनकी सर्जरी हुई है, लेकिन एक्चुअली में एक ग्रुप की सर्जरी हुई थी और एक की सर्जरी नहीं हुई थी। और जब इन लोगों को फॉलो किया गया, इन लोगों के इंप्रूवमेंट को देखा गया, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों ग्रुप्स के अंदर सिमिलर इंप्रूवमेंट ऑफ पेन पाया गया। यानी जिन लोगों की एक्चुअली सर्जरी नहीं भी हुई थी, वो लोग भी अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। ये कैसे संभव है? हाउ इज इट पॉसिबल? दीज आर कॉल्ड शैम सर्जरीज और शैम एक्सपेरिमेंट्स। अर्थात अपने विचारों के द्वारा ही उन लोगों को केवल उनका यह बिलीफ सिस्टम कि हाँ मेरी नी की सर्जरी अब हो गई है, अब मैं ठीक हूं, तो विचारों के द्वारा ही उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अब मैं बेटर हूं और अब मेरे को कोई भी बीमारी नहीं है। तो इस विचारों के द्वारा उन्होंने अनुभव किया और उनका नी पेन का जो एक्सपीरियंस था वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया। इसको कहा जाता है पावरफुल प्लेसिबो इफेक्ट। दोस्तों तभी जब तक हम बीमारी को अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उसको स्वीकार नहीं कर लेते कि मैं तो बीमार हूं, हां मैं रियली बीमार हूं, तब तक उसका प्रभाव हमारे शरीर पर तो हो सकता है लेकिन हमारी मनोस्थिति पर नहीं हो सकता। लेकिन जब हम अपने मन के द्वारा स्वीकार कर लेते हैं कि मैं बहुत बीमार हूं, मेरी तबीयत खराब है, तब उस बीमारी का इफेक्ट हमारे मन और शरीर पर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है और उसका प्रभाव हमको क्षीण कर देता है। हम लोग अपने आप को हील नहीं कर पाते हैं। दैट इज वाई यदि आज हम लोग अपने आप को स्वस्थ महसूस करना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं दोस्तों, तो बहुत आवश्यक है मन के द्वारा उस बीमारी पर विजय प्राप्त करना। यह शक्ति हम सबके पास है, ये हीलिंग की शक्ति हम सबके पास है। अगर हम चाहें तो अपने संकल्पों के द्वारा ही अपने शरीर को ऑर्डर में ला सकते हैं, अपने शरीर को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ऐसे ही बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स आज हमारे पास सीरियस इलनेसेस जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हैं उनके लिए भी हैं। ये जनाब जो हैं आप देख रहे हैं ये स्टोमैटिस मोराटिस हैं। ये स्टोमैटिस मोराटिस एक यूएस वॉर वेटरन थे। इन्होंने जब अपने यूएस आर्मी से रिटायर हुए तो इनको टर्मिनल लंग कैंसर से डायग्नोज किया और टर्मिनल लंग कैंसर से डायग्नोज करने के बाद जो बायोप्सी प्रूवन था, इनको कहा गया कि आपके पास केवल करीब 6 से 7 महीने हैं जीवन के लिए और उससे ज्यादा आप नहीं जी पाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि भाई अगर मैं अमेरिका में दफनाया जाऊंगा तो मेरा खर्चा बहुत आएगा, तो क्यों नहीं मैं अपने टाउन इकारिया ग्रीस के अंदर जो है वहां जाकर रहता हूं, अपने मित्रों के साथ कुछ समय रहूंगा और वहां मेरे को दफनाने का भी खर्चा बहुत कम आएगा। और ये अपने घर वापस चले गए। 1 महीना बीता 2 महीना बीता वहां दोस्तों के साथ रहे, खुश रहे, बचपन के पुराने दिन याद किए, अच्छा खाना खाते थे, इंजॉय करते थे, डेली घूमते थे। उन्होंने गार्डनिंग भी आरंभ की और इंजॉय करते करते अपनी लाइफ को लीड करना आरंभ किया। दोस्तों 6 महीना 1 साल 2 साल 3 4 5 6 7 8 10 साल बीत गए और 10 साल बाद इनके मन में विचार आया कि भाई मुझे तो कैंसर था और मुझे मरना था लेकिन मैं क्यों नहीं मरा। तो इन्होंने कहा कि मुझे अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए। और जब ये वापस अमेरिका गए अपने डॉक्टर से बात करने के लिए, तो जिन डॉक्टर्स ने इनको डायग्नोज किया था लंग कैंसर के से सफर ये कर रहे हैं, तो वो सारे डॉक्टर ऑलरेडी उस टाइम पर डेड थे। तो इनको बहुत हैरानी हुई और ये वापस आए और ये व्यक्ति 102 साल की उम्र के अंदर इन्होंने अपने शरीर को त्यागा और इस व्यक्ति को कहा जाता है द मैन हु फॉरगॉट टू डाई। और दोस्तों जहां ये रहते थे उस जगह को कहा जाता है द आइलैंड वेयर पीपल फॉरगेट टू डाई, जहां लोगों की एवरेज उम्र 90+ होती है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं अपने विचारों के द्वारा, अच्छे लाइफस्टाइल के द्वारा एक्सरसाइज करते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ को। और आज मानव अपने इसी लाइफस्टाइल को खो बैठा है। एक अंधी दौड़ के अंदर हम लोग दौड़ रहे हैं, एक मेटलिस्टिक लाइफ हमने अपने अराउंड क्रिएट कर ली है जहां हम स्वयं की स्वयं से ही कनेक्शन अपने परिवार, अपने संबंधों, अपने मित्रों के साथ हम लोग कनेक्शन दोस्तों खो बैठे हैं। इन जोन्स को जो एक्चुअल जोन्स पूरे वर्ल्ड में हैं जहां एवरेज एज किसी भी व्यक्ति की 90+ होती है, इनको ब्लू जोन्स कहा जाता है और ऐसे 5 ब्लू जोन्स पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं। तो दोस्तों ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि यदि हम सकारात्मक व्यक्तित्व अपने जीवन में लाते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं, तो ना केवल हम स्वयं की बीमारियों पर, स्वयं के शरीर पर, हेल्थ और डिजीज दोनों के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन किसी भी स्टेट ऑफ बॉडी को हम लोग अपने कंट्रोल में दोस्तों ला सकते हैं। इसी तरह मैंने अपने भी जीवन में देखा, जब मुझे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा डायग्नोस किया गया और 18-18 गोलियां मैं अपने बॉडी को देता था, हियरिंग लॉस हुआ, मास बढ़ता जा रहा था, कोई रिलीफ नहीं आता था। और उस समय जब 2 साल 2.5 साल ये बीमारी चली तो अल्टीमेटली सर्जरी 20 जून 2005 में मेरे ब्रेन पर की गई। और जब मैं 6 महीने बाद फॉलो कर रहा था तो वो एरिया जिसको ऑपरेट किया गया ब्रेन में वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन एक नया लेजन मेरे सेरिबेलम के अंदर आ गया और उस सेरिबेलम के मास को ऑपरेट नहीं किया जा सकता था। तो मैंने सोचा अब क्या करना चाहिए, मैं तो दवाइयां ऑलरेडी खा रहा हूं। तो दोस्तों, केवल अपने मन के संकल्पों के द्वारा, मेडिटेशन की पावर के द्वारा, राजयोग मेडिटेशन मैंने 1.5 साल स्पेशली फॉर माय ब्रेन इलनेस डेली प्रैक्टिस किया। जनवरी 2006 जिसके ब्रेन स्कैन्स आप देख रहे हैं उस समय ये आरंभ करके अप्रैल 2007 तक मैंने इसको रेगुलरली डेली प्रैक्टिस किया, डेली वाइब्रेशंस दिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरे ब्रेन को कोई भी परेशानी नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और ये दवाइयां मेरे ब्रेन पर बहुत पावरफुल असर कर रही हैं। और 1.5 साल बाद दोस्तों जब स्कैन्स रिपीट किए गए तो आप जानकर हैरान होंगे कि ये मास मेरे ब्रेन से कंप्लीटली डिसअपियर कर चुका था। ये सब क्या है? दिस इज नॉट मैजिक। एलोपैथी एक इंपॉर्टेंट साइंस है, बाकी सब साइंस एक इंपॉर्टेंट साइंस है, लेकिन दोस्तों जो हमारे माइंड की साइंस है वो इन सब साइंस को सिनर्जाइज करती है, यानी इनके साथ उसका एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। अर्थात दवाइयों के साथ जब हम अपने मन की शक्ति को सिंक्रोनाइज करते हैं तो ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह कार्य करता है। जैसे आप देखते हैं कि एक ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे ऑर्गन्स लेकर लोग बैठे होते हैं, मल्टीपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर बैठे होते हैं, और हर म्यूजिशियन की एक अपनी कैपेबिलिटी है, लेकिन जब एक ऑर्केस्ट्रा की बहुत सुंदर धुन निकलनी होती है तो उसके लिए आवश्यक है कि एक सेंट्रल कमांड जरूर जाए जो बीच से कंट्रोल व्यक्ति करता है, तब सब लोग एक हारमोनी के द्वारा बजाते हैं और एक बहुत सुंदर धुन बाहर निकल कर आती है। दोस्तों इसी प्रकार हमारे शरीर के जो 50 ट्रिलियन सेल्स हैं, हर सेल जो है अपने आप में एक इंडिविजुअल ऑर्गन है, एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में कार्य कर सकता है, उसका अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका अपना एक न्यूरल सिस्टम है, उसकी सब ट्रांसमीटर सेपरेट हैं। लेकिन दोस्तों जब हमारे मन के द्वारा एक सेंट्रल कमांड जाती है तो वो सेंट्रल कमांड हमारे 50 ट्रिलियन सेल्स अपनी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को छोड़कर सिंक्रनी में काम करते हैं और बहुत पावरफुल ऊर्जा शरीर के अंदर जनरेट करते हैं। जब हमारे मन राजयोग का मेडिटेशन के द्वारा हम अपने संकल्पों को हार्मोनाइज करते हैं, उसको शांति में लाते हैं, तो हमारे शरीर के द्वारा इतनी पावरफुल एनर्जी उत्पन्न होती है कि वो किसी भी बीमारी, किसी भी सिचुएशन को सुंदर रूप से दोस्तों हील कर सकती है। आज यही एनर्जी को हमको अपने जीवन में दोस्तों यूज करना है। आज हमारे संकल्पों को अगर हम देखें तो हमारे संबंधों पर भी बहुत पावरफुल असर डालते हैं। आज हमारे परिवारों में मनमुटाव होना, अपने परिवारों में नेगेटिविटी का आना, संबंधों में एक दूसरे की बात को नहीं समझना, उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि केवल हम अपने मन की भावनाओं को सकारात्मक नहीं रखते हैं। वो मेरी बात को नहीं समझता, मैं उसकी बात को नहीं समझता। दोस्तों आज हमारी वाणी जो है वो केवल 10% कार्य कर सकती है। वाणी के द्वारा हम केवल दूसरे लोगों को सुकून कुछ समय तक के लिए दे सकते हैं, लेकिन शब्दों से भी ज्यादा शक्ति हमारे मन के वाइब्रेशंस में होती है। आज हम सब लोग केवल फिजिकल एंटिटीज नहीं हैं, केवल शारीरिक एंटिटीज नहीं हैं, लेकिन आज साइंस कहती है कि हम सब लोग एनर्जी वेव्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं, और ये एनर्जी वेव्स बनती हैं हमारे संकल्पों के द्वारा जो हमारे अराउंड एक पावरफुल आभा मंडल, एक पावरफुल ऑरा क्रिएट करती हैं। तभी आप देखते हैं कि कभी कभी हमारे घर में बहुत खुशी का माहौल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे संकल्प बहुत खुशी के हैं, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी नेगेटिविटी को हम लोग कहते हैं अरे छोड़ो, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार जब हमारे घर में कोई ऐसी चिंता की बात है, क्रोध का माहौल है, तो एनवायरनमेंट कैसा होगा? नेगेटिव होगा, और तब हम एक दूसरे की बात को नहीं समझते हैं। तभी आज बहुत जरूरी है, और साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि हमारे संकल्प केवल हमारे तक नहीं, लेकिन टेलीपैथिक साइंस के द्वारा, नॉर्मल साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा उन्होंने आज ये प्रूव किया है कि हमारे संकल्प किसी भी व्यक्ति तक जरूर पहुंचते हैं जिसके लिए हम लोग वो संकल्प जनरेट करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हमसे कितने ही दूर भी क्यों ना बैठा हो। तो यदि हम श्रेष्ठ जीवन चाहते हैं, यदि हम अपने संबंधों को श्रेष्ठ चाहते हैं, तो हमारे संकल्पों में कैसी एनर्जी होनी चाहिए? प्यार की एनर्जी, एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस की एनर्जी, एक दूसरे को एप्रिशिएट करने की एनर्जी, एक दूसरे के लिए अडेप्टेबिलिटी की एनर्जी, एमिकेबिलिटी की एनर्जी, एक दूसरे के लिए कंपैशन की एनर्जी हमारे संकल्पों में दोस्तों होनी चाहिए। यही हमारे जीवन का यथार्थ सत्य है। जब हमारे जीवन में इतना प्यार, सुख और शांति होगा, तभी तो हमारे जीवन में खुशी, शांति और आनंद का हमको अनुभव होगा ना दोस्तों। तो आज हमारे जीवन में हमको टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हाईटेक बिहेवियर हमको नहीं चाहिए, लेकिन आज साइंस कहती है कि संकल्पों को श्रेष्ठ बनाकर आज हमको हाई टच चाहिए, एक दूसरे की तरफ एक कंफर्टिंग हैंड लाना, एक दूसरे के जीवन में उनको सुकून देना। इसी प्रकार दोस्तों, आज साइंस ये भी कहती है कि हमारे संकल्प हमारे शरीर के साथ साथ, हमारे व्यवहार के साथ साथ, हमारे भोजन पर भी, हमारे पानी पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। आपने इसके बारे में सुना भी होगा, डॉक्टर मासारू इमोटो ने कितने सुंदर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि जब हम अपने विचारों को श्रेष्ठ और सुंदर बनाते हैं, तो पानी का स्ट्रक्चर और फूड का स्ट्रक्चर हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। उन्होंने पानी को एक ही स्तोत्र से लेकर एक तरफ नेगेटिव एनर्जी दिया और एक तरफ पॉजिटिव एनर्जी दिया, और कुछ ही पल की मेडिटेशन के द्वारा जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर उस पानी के स्ट्रक्चर को एग्जामिन किया, तो उन्होंने पाया कि पानी का स्ट्रक्चर एक सुंदर डायमंड का रूप ले चुका था। जब हम पानी को सकारात्मक भावनाएं देते हैं, जैसे लव, थैंक्स, एंजल और पीस जैसी भावनाएं देंगे, तो यह पानी जो है अलग अलग सुंदर क्रिस्टल पैटर्न्स लेता है। लेकिन जब पानी को हम नकारात्मक भावनाएं देते हैं, तो यही पानी नेगेटिव शेप ले लेता है, यानी एक अगली शेप ले लेता है। और जब इन्होंने इस पानी के साथ साथ इन एक्सपेरिमेंट्स को भोजन पर भी एक्सट्रापोलेट किया, तो चावल के दानों को जब प्यार की भावनाएं और नकारात्मक यानी हेट की भावना दी गई, तो इन्होंने पाया कि जिसको नेगेटिव भावना दी गई, तो उस चावल के दाने में जल्दी फंगस लग गई एज कंपेयर टू उस चावल के दाने जिसको प्यार की भावना दी गई, उसकी शेल्फ लाइफ सिग्निफिकेंटली दोस्तों ज्यादा थी। ये सब क्या शो करता है? ये शो करता है कि हमारे संकल्प हमारे भोजन हमारे पानी पर भी गहरा असर डालते हैं। तभी हम किसी भी आध्यात्मिक स्थान पर जाकर जब चरणामृत को ग्रहण करते हैं, है तो पानी ही ना वो, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो नॉर्मली अन्न, लेकिन वो हमारे तन और मन दोनों को सुकून प्रदान करता है। इसके पीछे साइंस यही है कि हमारी भावनाएं, एटमॉस्फेयर की भावनाएं उस पानी और उस भोजन को शक्तिशाली बना देती हैं। तभी ब्रह्मा कुमारीज में हम एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज करते हैं कि जब भी हम भोजन लाते हैं, बनाते हैं, जब सब्जियों को हम लाते हैं, उनको काटते हैं, उनको परमात्मा की याद में भोजन बनाते हैं, परमात्मा की याद में भोजन बनाने के बाद जो भोजन बनाया जाता है उसको परमात्मा को स्वीकार कराया जाता है, उसको भोग लगाया जाता है, ताकि वो भोजन केवल भोजन का रूप नहीं, वो एक प्रसाद का रूप ले ले, वो एक अमृत के रूप में बन जाए जो हमारे तन और मन दोनों को दोस्तों सुकून देता है। इसी प्रकार आज साइंस के एक्सपेरिमेंट्स ये क्लियरली प्रूव कर चुके हैं कि हमारे मन के संकल्प हमारे भोजन के साथ साथ हमारे नेचर पर भी कितना पावरफुल असर डालते हैं। एक एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने फ्लावर के 3 पॉट्स को लिया और फ्लावर के 3 पॉट्स को उन्होंने एक को प्यार की एनर्जी दी, एक को इग्नोर किया और एक को नेगेटिव एनर्जी दी, अर्थात उसको बार बार कोसा गया। और दोस्तों जब उन्होंने पाया कि जिस प्लांट को उन्होंने प्यार की एनर्जी दी, तो वो प्लांट जो है वो ग्लो करता रहा, उसके अंदर फ्लावर्स बहुत सुंदर सुंदर निकला है, लेकिन जिसको इग्नोर किया और जिसको नेगेटिव बातें बोली, वो प्लांट जो है वो डाई आउट हो गया और उसकी शेल्फ लाइफ सिग्निफिकेंटली कम हो गई। तो आज साइंस ये कहती है, प्रकृति के ऊपर कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स ये क्लियरली कहती है कि जब हमारा मानव मन उस प्रकृति को भी अपना मित्र बनाना चाहता है, तो उस प्रकृति के प्रति भी हमको रहम और प्यार की भावनाएं आनी चाहिए। आज कहीं पर भी बारिश आ जाती है, कहीं पर भी सडनली तूफान आ जाता है जो कि प्रिडिक्टेबल भी नहीं होता। इतने हजारों लोग अर्थक्वेक में मर जाते हैं, कितने हजारों लोग सुनामी में मर जाते हैं, आग लग जाती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब तत्व जो प्रकृति के हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने संकल्पों को उसके प्रति सकारात्मक नहीं रखा है। अपने स्वार्थ की भावनाओं के द्वारा हमने प्रकृति के तत्वों को भी कंप्लीटली दोस्तों डिस्ट्रॉय कर दिया है। आज बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में ये परिवर्तन लाएं। प्रकृति के प्रति भी दोस्तों हम लोग रहम और सुकून की भावनाएं लाएं। इसी प्रकार दोस्तों हम अपने विचारों के द्वारा एनवायरमेंट को भी परिवर्तित कर सकते हैं। एनवायरमेंट को परिवर्तित, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट वॉशिंगटन सिटी में किया गया और वॉशिंगटन सिटी जब वहां पर रेप्स, होमिसाइड्स, एसॉल्ट्स और नेगेटिविटी का एनवायरमेंट सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा था, तो एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4000 लोगों को मेडिटेट करने के लिए बिठाया और 6 हफ्ते के लिए उनको रोज आधा घंटा मेडिटेट कराया और आधे घंटे रोज मेडिटेशन के द्वारा उनको कहा गया कि वो पूरे वॉशिंगटन में ये भावनाएं फैलाएं कि यहां पर नेगेटिविटी और सारे नेगेटिव इंसिडेंट सिग्निफिकेंटली कम हो रहे हैं और यहां पर पॉजिटिविटी बढ़ रही है। दोस्तों केवल 6 हफ्ते की मेडिटेशन के द्वारा जब उन्होंने एक पावरफुल इन्फ्लुएंस क्रिएट किया, पावरफुल ऑरा क्रिएट किया, तो वॉशिंगटन में ये सारे रेप्स, होमिसाइड्स और असॉल्ट्स का जो परसेंटेज था वो 23% दोस्तों डिक्रीज हो गया। और उन्होंने इसको एनालाइज करते हुए बताया कि यदि परमानेंट केवल 4000 लोग मेडिटेट करते हैं इन अ सिटी ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल तो 50% क्राइम रेट वॉशिंगटन सिटी का डिक्रीज हो जाएगा। अर्थात अगर समस्त विश्व का परिवर्तन करना है तो सबको परिवर्तन नहीं करना दोस्तों, हम सबको अपने लिए स्वयं इनिशिएट लेना है, क्योंकि हमारे संकल्प एक एक जगह पूरे संसार का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। संसार को भी परिवर्तन करने की शक्ति हमारे अपने पास है। वी हैव द पोटेंशियल टू अनलॉक द पावर्स ऑफ अवर माइंड। और इस पावर को बढ़ाने के लिए दोस्तों बहुत सुंदर जो अभ्यास, बहुत सुंदर जो टेक्निक है वो है राजयोगा मेडिटेशन की। एक दिन के अंदर हमको 1440 मिनट मिलते हैं। हम लोग बिजी बिजी कहके अपना दिनचर्या को व्यतीत कर देते हैं, लेकिन दोस्तों जिस तरह हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को चार्ज करते हैं, लैपटॉप को चार्ज करते हैं, घड़ी को चार्ज करते हैं, इसी प्रकार इस जीवन को चलाने वाला जो हमारा शरीर है, इस जीवन को चलाने वाला जो हमारी आत्मा है, हमारा मन, बुद्धि और संस्कार है, क्या हम उस आत्मा को भी चार्ज करते हैं, उस मन को भी चार्ज करते हैं? उसको चार्ज करने की जो टेक्निक होती है वो है राजयोगा मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा हम सारा ध्यान बाहर के द्वारा छोड़कर अपने अंदर स्वयं की तरफ केंद्रित करते हैं। और दोस्तों आज साइंस ने बहुत सुंदर रूप से बताया है कि जब हम स्वयं अपने मन की गहराइयों में जाते हैं, हम अनुभव करते हैं कि परमात्मा से वो शक्तियां हमको प्राप्त हो रही हैं, तो वो शक्तियां हमारे ब्रेन के अंदर एक बैलेंसिंग एक्ट, एक सिंक्रोनाइजेशन एक्ट क्रिएट करती हैं। और कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। आज साइंस ये कहती है कि केवल 15 मिनट की मेडिटेशन के द्वारा एक नॉर्मल व्यक्ति का अगर हम ब्रेन देखें तो वहां पर अनबैलेंस्ड ब्रेन वेव पैटर्न है, अनबैलेंस्ड ब्रेन वेव पैटर्न है। वहां पर आप देखेंगे राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में बैलेंसिंग नहीं है, तभी ब्रेन वेव अनबैलेंस होने के कारण व्यक्ति के अंदर चिंता है, उसकी डिसीजन पावर पुअर होती है। लेकिन जब मात्र हम केवल 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों के अंदर सिंक्रोनाइजेशन होने लगती है। आप एक्सपीरियंस करेंगे कि राइट ब्रेन जो कि हमारा क्रिएटिव ब्रेन है और लेफ्ट ब्रेन जो कि हमारा लॉजिकल ब्रेन है, वो दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं और सिंक्रोनाइज होने के कारण हमारी सोचने की शक्ति, हमारी कॉग्निटिव पावर, हमारी डिसाइसिव पावर और पावरफुल हो जाती है। और जब हम 25 मिनट मेडिटेशन कर लेते हैं, प्रॉपर मेडिटेशन जब हम 25 मिनट प्रैक्टिस करते हैं, तो देयर इज अ कंप्लीट हार्मनी दैट इज क्रिएटेड इन बोथ अवर राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। इसको कहा जाता है एक प्रैक्टिकल इंटीग्रेटिव ब्रेन, जहां पर राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन कंप्लीटली एक दूसरे के साथ हार्मोनाइज हैं, होलिस्टिक हैं, अर्थात क्रिएटिविटी और लॉजिस्टिक्स दोनों का बैलेंस है, जहां शांति और जहां रीजनिंग दोनों का बैलेंस है। और यही बैलेंसिंग एक्ट दोस्तों हमको राजयोग का मेडिटेशन के द्वारा मिलती है। ये मेडिटेशन एक ब्यूटीफुल साइंस है, ये ब्यूटीफुल साइंस हमको एक जीवन जीने का तरीका सिखाती है, केवल शरीर का जीवन जीने का नहीं, लेकिन हमारी लाइफ, हमारी आत्मा जो है, जो इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर है, उसको ये एनर्जाइज करती है। और जब हमारा कंट्रोल सेंटर, हमारी आत्मा, जो हमारी मन, बुद्धि और संस्कार के रूप से हमारे जीवन में कार्यान्वित होती है, जो मैनिफेस्ट करती है, जिसको हम लोग कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, जिसको हम लोग साइंस के रूप से साइकी कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं, गॉड स्पिरिट कह सकते हैं, बीइंग कह सकते हैं दोस्तों, जब वो एनर्जाइज हो जाती है तो हमारा कंप्लीट लाइफ जो है वो हार्मोनाइज हो जाती है। तो चलिए केवल कुछ पल हम लोग मेडिटेशन का एक्सपीरियंस करते हैं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, गहरी सांस लेते हुए अपना सारा ध्यान अपने मन के संकल्पों की तरफ केंद्रित करें। अपने आप को देखें इस शरीर के अंदर विद्यमान विकृति के मध्य में रहने वाली मैं एक शक्तिशाली चमकती हुई आत्मा हूं। परमपिता परमात्मा से, जो कि सर्व शक्तियों का सागर है, उनसे शांति, खुशी, ज्ञान, पवित्रता, आनंद, ये सर्व शक्तियां मुझ आत्मा को पावरफुल फाउंटेन के रूप में शक्तिशाली बना रही है। मेरा एक एक संकल्प खुशी और शांति से परिपूर्ण है। अनुभव करें एक एक संकल्प, मेरा हर संकल्प एक पावरफुल शक्ति, एक पावरफुल ऊर्जा मेरे शरीर के एक एक सेल को दे रहा है। यही पावरफुल ऊर्जा मेरे मन से बाहर निकलते हुए एक पावरफुल आभा मंडल मेरे अराउंड बना रही है। ये पावरफुल आभा मंडल प्यूरिटी, शांति, खुशी और आनंद से परिपूर्ण है। मेरे संबंध, मेरा परिवार, समाज, प्रकृति और प्रकृति का एक एक तत्व मेरे श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा बहुत शांत और पवित्र होता जा रहा है। परमात्मा की सर्व शक्तियां अनुभव करें। इस इसी शक्ति में और इसी स्थिति में स्थित होकर मैं अपने हर कार्य व्यवहार में धीरे धीरे आती हूं। मैं बहुत शांत हूं, बहुत आनंद का अनुभव कर रही हूं।
दोस्तों, हमारे साथ नई दिल्ली से डॉक्टर मोहित गुप्ता जी जुड़े थे, जिन्होंने एक अनूठे विषय पर हम सबका ध्यान खिंचवाया। आखिर विज्ञान क्या है, माइंड का, मेडिटेशन का और हमारी आस्था का या हमारे विश्वास का। मैं आशा करता हूं कि आप सबको एक नया इंसाइट जरूर मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहित गुप्ता जी का। दोस्तों, मेडिटेशन के साइंस के बारे में तो हमने समझा, ये कैसे काम करता है ये भी हमने समझा। अब उसको एक्सपीरियंस करने की बारी आती है। राजयोग मेडिटेशन के बारे में कुछ और रोचक जानकारियां हासिल करने और उसको अनुभव करने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालते हैं, और ये अनुभव कराने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी सरिता दीदी जी हैं। ब्रह्मा कुमारी सरिता दीदी जी राजयोग शिक्षिका हैं। ब्रह्मा कुमारी पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनसे राजयोग के कुछ गहरे अनुभव सीखते हैं और अनुभव करते हैं। सरिता दीदी जी,
ओम शांति। आज की दुनिया में सबसे बड़ी गिफ्ट है पीस ऑफ माइंड, जो हम अपने आप को दे सकते हैं, जो हम दूसरों को दे सकते हैं। मन की शांति, लेकिन ये मन की शांति कहां से आएगी, कैसे आएगी? क्योंकि हमारे जीवन में कई सारी परिस्थितियां आती है। What happens, it doesn't matter. But what happens in your mind, that matters. हमारे जीवन में जो चल रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में जो चल रहा है उसके प्रति हमारा विजन कौन सा है, परसेप्शन कौन सा है और इंटरप्रिटेशन कौन सा है, इसी आधार से मन शांत होता है या अशांत। और इसीलिए आज हम अपने मन के विचारों को बहुत केयरफुली चूज करें, जिससे मन की शांति बढ़े। उन विचारों से हम अपने आप को अलग करें जो मुझे दुखी करें। और इसी के लिए चलिए आज हम एक बहुत सुंदर मेडिटेशन करते हैं, शांति का मेडिटेशन। एकदम रिलैक्स होके बैठे, शांत होके बैठे, अपने शरीर को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। जो विचार आपको देते जाएंगे आप उन्हें विजुलाइज करते जाए। जैसे जैसे विजुलाइज करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, तो शांति की अनुभूति अपने आप होती जाएगी। चलिए अपने आप को स्थिर कर देते हैं। विजुलाइज करें सागर को। सागर के किनारे हम खड़े हैं और देख रहे हैं सागर की लहरों को। सागर की लहरें किनारे पर आ रही है और वापस जा रही है। कितना आवाज है उन लहरों का, लहरों से होते हुए सागर के अंदर जाओ, मध्य में जाओ तो वहां सागर शांत है, और इसके भीतर जाओ तो सागर और शांत है, स्थिर है। मेरा मन भी एक सागर की तरह है, मेरे जीवन में जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति के लिए जो भी संकल्प करते हैं वो इन लहरों की तरह है। परिस्थिति भी एक लहर की तरह है। ये परिस्थिति जो भी आती है वापस चली जाएगी, परमानेंट नहीं रुकेंगे। मुझे तो साक्षी होकर बस अपने विचारों को देखना है। इस समय मेरे जीवन में चलने वाली जो भी परिस्थिति है उसके प्रति आने वाले विचारों को मैं देख रहा हूं। डिटैच होकर और सोचता हूं कोई भी परिस्थिति परमानेंट नहीं, परिवर्तनशील है। मुझे तो सागर की तरह भीतर से एकदम स्थिर रहना है, स्थिर रहने के लिए मैं विचार करता हूं, मुझे शांति से सोचना है, मैं अपने आप को संकल्प देता हूं मैं शांति की ऊर्जा हूं, मैं शांति का सितारा हूं, मैं शांति से भरपूर हूं। मेरा स्वधर्म ही है शांति। शांति मेरा गुण है, शांत रहना। जो परिस्थिति आए मैं उसका सामना शांति से करूंगा, मैं अपने मन को शक्तिशाली बनाता हूं। और उसके लिए मैं अपनी विशेषताओं को देखता हूं मेरे अंदर कौन सी विशेषताएं हैं जिन विशेषताओं के आधार से मेरे मन की स्थिरता बढ़ती जाएगी मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मैं उनको याद करता हूं मैं अपने अंदर के गुणों को देखता हूं मेरे अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जिन गुणों को याद करने से मेरी शक्ति बढ़ेगी मैं उन्हें याद करता हूं और अब ये याद करने से मेरा मन तैयार है हर परिस्थिति का सामना करने अब मेरा मन एकदम स्थिर है शांत है मैं शांति की ऊर्जा हूं मैं शांति का पुंज हूं मुझसे शांति की प्रकंपन शांति की लहरें सागर की तरह चारों ओर फैल रही है Visualize मुझ सितारे से शांति की लहरें सागर की तरह चारों ओर फैल रही है मैं बहुत शांति का अनुभव कर रहा हूं बहुत पावरफुल अनुभव कर रहा हूं सारा वातावरण एकदम शांत स्वरूप पॉजिटिव बन रहा है। ओम शांति। इसी का अभ्यास आज सारा दिन करें, हमेशा करें, रोज सुबह और रोज शाम को। अगर हम ये शांति का मेडिटेशन करेंगे जिससे हमारी मन की शक्ति बढ़ेगी, तो आप मिराकल्स देखोगे। आपके रिश्तों में, आपके परफॉर्मेंस में, आपके इंटरैक्शन में और आपके मन में। Because the biggest asset in the world is peace of mind. The biggest gift in the world is peace of mind. और इसलिए इसे रोज, इस asset को, इस gift को रोज बढ़ाते रहिए। ओम शांति।
इस सुंदर मेडिटेटिव एक्सपीरियंस के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ब्रह्मा कुमारी सरिता जी का, जिन्होंने हम सबको इस मेडिटेटिव जर्नी में एक्सपीरियंस करवाया। और मैं समझता हूं कि आप सभी इस एक्सपीरियंस को अपने साथ बनाए रखेंगे और बीच बीच में समय निकालकर जरूर करते रहेंगे। पुनः एक और बार सरिता दीजी का धन्यवाद। माइंड बॉडी मेडिसिन के कॉन्फ्रेंस के इस आखिरी दिन के इस सुबह के सत्र में आप सभी लोग अच्छे विचारों से ओतप्रोत हो रहे हैं। हीलिंग के विषय पर हमने बहुत सारी रोचक जानकारियां हासिल की हैं। हमने समझा है कि अपने आप को हील करना भी कितना इंपॉर्टेंट है। हम दूसरों को हील करने के बारे में तो सोचते हैं, बट क्या खुद हीलर को हील करने की आवश्यकता है? हम सभी वो लोग जो मेडिकल कर्मी हैं, जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं या पैरामेडिक्स हैं या मेडिसिन के फील्ड में काम करते हैं, जो दूसरों का ख्याल रखने के लिए, दूसरों को ठीक करने के लिए काम करते हैं, क्या कभी हमने अपने आप को हील करने के बारे में सोचा है? इसी विषय पर, यानी हीलिंग द हीलर विषय पर, ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी हमारे साथ अगले वक्तव्य में रहेंगे। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, सिस्टर शिवानी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनके मार्गदर्शन से जिन लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है, जिन लोगों के अंदर क्रांतिकारी विचारधाराएं आई हैं, उनके वक्तव्य को सुनने का एक सुंदर मौका आपके सामने है। मैं आमंत्रित करता हूं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी को।
ओम शांति। हीलिंग द हीलर। हीलिंग किसको कहेंगे? जब हम किसी बीमार को सेहत देने में सहयोग देते हैं, चाहे डॉक्टर है, नर्स है, उनके आसपास सारे जो उनको सहयोग देने वाले हैं, वो सब उस हीलिंग में सहयोग दे रहे हैं। चाहे उनके परिवार के मेंबर्स हैं, वो भी तो हीलिंग का एक हिस्सा ही है। सो ये सब हीलिंग कर रहे हैं। चाहे हम बीमार को हेल्थ देने की हीलिंग करें, चाहे हम किसी दुखी परेशान को सुख शांति देने की हीलिंग करें, तो चाहे वो हीलिंग शरीर की है, चाहे वो हीलिंग मन की है, हीलिंग हम सब करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने कभी ना कभी किसी की हीलिंग ना की हो। और अगर और किसी की नहीं, तो अपनी हीलिंग तो की है, क्योंकि जब खुद का मन परेशान होता है तो उस मन को ठीक करना होता है। जब खुद का शरीर बीमार होता है तो उसको भी जो हम वाइब्रेशंस भेजते हैं, उसको हीलिंग कहते हैं, कि हम अपने ही शरीर को हील कर रहे हैं अपने सोचने के तरीके से। तो हीलिंग हम सब करते हैं, लेकिन कभी कभी हम हीलिंग को सिर्फ बाह्य रूप से देख लेते हैं कि हीलिंग मतलब अच्छा खाना खिलाना, एक्सरसाइज करवाना, एक डॉक्टर एक सिस्टर के लिए हीलिंग मतलब ऑपरेशन करना, प्रोसीजर करना, दवाई देना समय पर, सब कुछ एक्यूरेट, विच मीन्स टेकिंग केयर, टेकिंग केयर एकदम एक्यूरेट। लेकिन हीलिंग दो लेवल पर होती है। एक हीलिंग है जो आउटसाइड हो रही है, आउटसाइड, कि आउटसाइड जो चीज ठीक नहीं है उसको ठीक करना वो है हीलिंग। लेकिन साथ साथ हीलिंग मन की भी होती है। मन की स्थिति, जिसका शरीर बीमार हो उनका मन खुश हो, शक्तिशाली हो, ये चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि ज्यादातर जब शरीर बीमार होता है तो मन भी परेशान हो जाता है, उदास हो जाता है। अगर बहुत दिन हम अपनी नॉर्मल जीवन पर नहीं आ पाते तो मन हताश सा हो जाता है। तो शरीर को स्वास्थ्य देने के साथ साथ मन को भी सुकून की जरूरत होती है। तो अब एक व्यक्ति को देखते हैं कि सपोज मेरा शरीर बीमार है और उस कारण से मेरा मन भी परेशान है, उदास है। सो आई एम द वन हु नीड्स द हीलिंग, मुझे हीलिंग की आवश्यकता है। अब मेरे आसपास सभी जो है बहुत 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 मेहनत कर रहे हैं मेरी हीलिंग करने के लिए, तो वो डॉक्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उनके असिस्टेंट्स हैं, मेरा अपना परिवार है, संबंधी हैं, दोस्त हैं, सारे जो हैं वो मेरी हीलिंग कर रहे हैं। लेकिन एक है हीलिंग बाहर की चीजों का ध्यान रखना। कभी कभी बाहर सब कुछ परफेक्ट करते हुए मेरे आसपास जो लोग होंगे वो कभी कभी अगर चिंता क्रिएट कर लेते हैं, कभी कभी वो परेशान हो जाते हैं, कभी कभी वो हताश हो जाते हैं, कभी कभी वो अपने जीवन की किसी और परिस्थिति के बारे में सोचकर टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, कभी कभी वो किसी के व्यवहार को देखकर गुस्सा भी कर देते हैं। ये सब मेरे आसपास के लोगों के मन की स्थिति है, जो बहुत प्यार से और बहुत जिम्मेवारी से मेरी हीलिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरी हीलिंग के साथ साथ उनकी अपनी भी तो जीवन है ना, तो उनके जीवन में बातें आती हैं, और जब उनके जीवन में बातें आती हैं तो वो कभी कभी परेशान, नाराज, उदास, स्ट्रेस्ड, बहुत कुछ हो जाता है यहाँ पर। अब मेरी हीलिंग हो रही है, लेकिन मेरे आसपास के लोग अगर कभी परेशान, उदास या नाराज हो जाते हैं तो वो सारी वाइब्रेशंस भी मेरी तरफ आती है। उनकी इंटेंशंस बहुत अच्छी है, उनकी इंटेंशंस है कि मेरा शरीर जल्दी से ठीक हो जाए, उनकी इंटेंशन ये भी है कि मेरा मन खुश रहे, पावरफुल रहे। वो हमेशा मुझे कहते हैं तुम खुश रहो, तुम चिंता नहीं करो, हम बैठे हैं, सब कुछ हो जाएगा। तो वो सिर्फ मेरे शरीर की हीलिंग नहीं कर रहे, वो मेरे मन को भी मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, वो मुझे औरों के एक्सपीरियंसेस सुना रहे हैं कि कैसे दूसरे कितनी जल्दी ठीक हो गए, वो मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो अपनी बातों को लेकर कभी कभी जो चिंता, परेशानी और दुख क्रिएट करते हैं वो वाइब्रेशंस उनके साथ चलते हैं। सो आई एम द वन हु नीड्स हीलिंग एंड एवरीवन अराउंड मी इज द हीलर विद द प्योर इंटेंशन ऑफ हीलिंग मी। लेकिन जब वो मेरा ध्यान रख रहे हैं, मेरा इलाज कर रहे हैं, साथ साथ उनकी जो वाइब्रेशन है, उनका जो ऑरा है, वो उनके साथ साथ चलता है। वी ऑल हैव एन एनर्जी फील्ड। हमारी एनर्जी फील्ड हमारी फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होती है। हम लोगों से बहुत प्यार से बात करते हैं, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, हम बाहर लोगों को सब कुछ परफेक्ट करके देते हैं, लेकिन हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो है हमारी एनर्जी फील्ड, वाइब्रेशन टू वाइब्रेशन कनेक्शन, एनर्जी फील्ड। तो अब विजुअलाइज करते हैं कि मेरे आसपास दो लोग हैं, एक हीलर है हॉस्पिटल में, एक मेरे फैमिली मेंबर है। ये दो लोग मेरे पास खड़े हैं, दोनों सब कुछ परफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों अंदर मन में थोड़ा अपनी किसी बात से परेशान है, दुखी है, नाराज है। तो उनकी जो ऑरा है, उनकी जो एनर्जी फील्ड है, वो भी मेरे पास खड़ी है। अब इस सीन को अपने सामने लाइएगा। ये दोनों मेरे हीलर्स हैं, मेरा शरीर बीमार है, मेरा मन दुखी है, ये दोनों मेरे नजदीक खड़े हैं। एक एनर्जी फील्ड मेरी अपनी है और दो एनर्जी फील्ड्स मेरे नजदीक खड़ी हुई हैं। मेरी जो एनर्जी फील्ड है वो वैसे ही अभी अपनी बेस्ट वाइब्रेशन पर नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दिन से हॉस्पिटल में हूँ, बीमार हूँ, मुझे कुछ अच्छा दिख नहीं रहा, मुझे अच्छा खाने को नहीं मिल रहा, मुझे धन कम पड़ रहा है, बहुत सारी बातें हैं मेरे तो मन पर जो चल रही हैं, तो मेरी जो एनर्जी फील्ड है वो थोड़ी सी डाउन है, ऑलरेडी डाउन है। अब मेरे पास जो ये दो लोग खड़े हैं, एक मेरे हॉस्पिटल के डॉक्टर या नर्स है और एक मेरा फैमिली मेंबर है, दोनों अपनी किसी बात से टेंशन में हैं, तो उनकी जो एनर्जी फील्ड है वो भी थोड़ी सी डाउन है, मेरे जितनी डाउन नहीं है लेकिन थोड़ी सी डाउन है। अब इसको एक फिगर देते हैं जस्ट ताकि हमें थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। अब मेरी एनर्जी फील्ड काफी डाउन है क्योंकि मेरा शरीर भी बहुत दर्द में है, सब कुछ अनकंफर्टेबल सा है और मन भी उदास है, तो मेरी एनर्जी फील्ड लेट्स से 50 पर है, होनी 100 पर चाहिए लेकिन मेरी एनर्जी फील्ड 50 पर है सपोज। और ये जो दोनों हीलर्स हैं जो बहुत प्यार से मेरा ध्यान रख रहे हैं, इनकी एनर्जी फील्ड लेट्स से 70 पर है, तो ये दोनों अपनी 70 की वाइब्रेशन से मेरे नजदीक खड़े हैं और मेरी वाइब्रेशन 50 या उससे भी डाउन हुई है। अब अगर हम इस तरह से तीन लोग, तीन एनर्जी फील्ड्स 10-15 मिनट भी, 5-10 मिनट भी ऐसे खड़े हैं, तो दो चीजें होने वाली हैं। एक, उनकी एनर्जी फील्ड मुझ पर प्रभाव डालेगी और दूसरा, मेरी एनर्जी फील्ड उन पर प्रभाव डालेगी। उनकी वाइब्रेशंस मुझे मिलेंगी और मेरी वाइब्रेशंस उनको मिलेंगे, ये होने वाला है। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। हम बात करें ना करें, हम एक दूसरे के लिए कुछ करें ना करें, लेकिन हमारी वाइब्रेशंस एक दूसरे के साथ सारा दिन एक्सचेंज हो रही है। अब क्योंकि मैं डाउन हूं 40 या 50 पर हूं, और ये भी कोई बहुत ज्यादा अप नहीं है, ये भी 70 पर ही है, तो देयर इज बिग चांसेस कि जो मेरी लोअर वाली वाइब्रेशन है वो इन पर थोड़ा सा असर करना शुरू कर देती है, थोड़ा सा। इनको वो पता नहीं चलेगा, वो दिखाई नहीं देता और ना ही वो एकदम से महसूस हो जाता है कि हमें तो बड़ी नेगेटिव वाइब्रेशन मिली है। कई बार हमें महसूस भी होता है, हम कहते हैं आई डिड नॉट गेट गुड वाइब्स फ्रॉम दैट पर्सन। सो वाइब्स मतलब वो व्यक्ति अपने ही जीवन में अपनी बातों से परेशान उदास है, तो हमें बहुत अच्छी वाइब्स नहीं मिलती है उनसे, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनको मेरी वाइब्स पता चल रही है, लेकिन उनको पता चले या न पता चले मेरी वाइब्रेशंस तो रेडिएट कर ही रही है, दे आर रीचिंग आउट टू देम। अब पहले ये मुझे मिलते हैं, 10 मिनट के बाद ये किसी और को मिलते हैं, उसके 10 मिनट के बाद ये किसी और को मिलते हैं, और ये अगर अपनी 60-70 की वाइब्रेशंस पे चल रहे हैं और वो मेरे जैसे 40-50 की वाइब्रेशंस पे या उससे भी कम की वाइब्रेशंस पे 5-6 लोगों को भी मिल लें, तो धीरे धीरे इनकी जो 70 की वाइब्रेशन थी वो 70 न रहकर 68 या 65 तक पहुंच जाएगी, और फिर ये फिर भी उसको रोज एनर्जाइज ना करें तो फिर हर रोज वो मेरे जैसे कितने लोगों को मिल रहे हैं जो बीमार है, परेशान है, और हमारी वाइब्रेशंस का असर इस हीलर पर पड़ता जा रहा है। तो वो हीलर की वाइब्रेशन एक अपनी मन की स्थिति की वजह से थोड़ी डाउन है, और दूसरा जिनके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं उसकी वाइब्रेशन की वजह से भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और इसलिए सबको सुख देते हुए, सबको सेहत देते हुए, सबका कल्याण करते हुए, लेकिन खुद की वाइब्रेशन का अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर दूसरों की वाइब्रेशंस अब्सॉर्ब करते 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 वो हीलर का अपना मन स्ट्रेस को नॉर्मल समझकर अपने जीवन का हिस्सा बनाना शुरू कर लेता है। बाहर से नहीं दिखाई देता, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन वाइब्रेशंस वो पहुंच गई है, तो वो स्ट्रेस को, लो फीलिंग को, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करने को, किसी को छोटी छोटी बात में हर्ट हो जाने को, हर एक का अलग अलग होगा, वाइब्रेशन लो हो दिखती वो अलग अलग रूप में है। जैसे इम्यूनिटी लो हो शरीर की तो बीमारी अलग अलग रूप से आती है, किसी को कोई बीमारी तो किसी को कोई बीमारी, लेकिन मूल कारण तो होता है कि शरीर इम्यूनिटी लो थी। इसी तरह जब हमारी इमोशनल इम्यूनिटी लो होती है तो वो दिखती अलग अलग तरह से है। कभी कभी तो पता भी नहीं चलेगा कि इमोशनल इम्यूनिटी हमारी लो है। आज हम सब अपनी फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कितना कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ हम अपनी इमोशनल इम्यूनिटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या हम सचमुच एक परफेक्ट फिजिकल इम्यूनिटी अचीव कर पाएंगे? क्योंकि मन का असर शरीर पर तो पड़ता ही है। तो इमोशनल इम्यूनिटी लो होना वो अलग अलग रूप में दिखाई देता है। किसी के अंदर वो गुस्से के रूप में दिखाई देता है, अग्रेशन के रूप में दिखाई देता है, किसी के अंदर वो ईगो के रूप में दिखाई देता है, कोई बहुत कंट्रोलिंग होता है, कोई बहुत डोमिनेटिंग होता है, कोई मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, कोई जेलेसी क्रिएट करता है, कोई हर्ट क्रिएट करता है, कोई इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस करता है, तो कोई डर फियर एक्सपीरियंस करता है, कोई टेंशन वरी एक्सपीरियंस करता है, कोई कंपटीशन रेस में ही अपने आप को देखता रहता है, कोई दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करता रहता है, कोई शिकायत बहुत करते हैं। तो अलग 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 रूप से ये इमोशनल बीमारियां, ये फिजिकल नहीं है, ये मेंटल हेल्थ इश्यू नहीं है, ये एक इमोशनल हेल्थ इश्यू है कि हर्ट एंगर रिजेक्शन मैनिपुलेशन डोमिनेशन कंट्रोलिंग क्रिटिसाइजिंग कंपेयरिंग कंपीटिंग बातों को भूल ना पाना फॉरगिव ना कर पाना ये सब इमोशनल बीमारी है। इमोशनल हेल्थ क्या है? ग्रैटिट्यूड कंपैशन कोऑपरेशन पीस स्टेबिलिटी काम पेशेंस ईजी एक्सेप्टेंस लेटिंग गो फॉरगेटिंग द पास्ट फॉरगिवनेस ये सब हाई इमोशनल इम्यूनिटी है, ये इमोशनल हेल्थ है। अब जब हम औरों की टेंशन चिंता गुस्से के वाइब्रेशंस में बहुत ज्यादा रोज रहते हैं और अगर हम अपनी वाइब्रेशंस को एनर्जाइज करने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो दूसरों की वाइब्रेशंस का असर हमारी वाइब्रेशन पर पड़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहेंगे इमोशनल इन्फेक्शन। जैसे एक हीलर सारा दिन हॉस्पिटल में कितने लोगों के संग में आते हैं, लेकिन वो ध्यान कितना रखते हैं कि ग्लव जरूर पहनने हैं, हाथ जरूर धोना है, अब आजकल के समय में तो किट वो पहनना है किसी से मिलने से पहले। लेकिन ये सब हम क्यों करते हैं? ताकि फिजिकली हम दूसरे की इन्फेक्शन से बचे रहें, क्योंकि हमारा रोल है सबको ठीक करना, लेकिन सबको ठीक करते हुए अपने शरीर का तो ध्यान रखना होगा। तो गलती से भी नहीं भूलते अपने आप को फिजिकली प्रोटेक्ट करना। सिमिलरली इमोशनली हम सबका ध्यान रख रहे हैं, सबकी हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को इमोशनली प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इमोशनली अपने आप को सेफ नहीं रखेंगे, तो इतने लोगों को सारा दिन मिलते हुए जो कि अपनी बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, जिनका माइंड भी बहुत हैप्पी नहीं है शायद, और जिनकी बॉडी भी हेल्दी नहीं है, और एक ऐसे एनवायरमेंट में सारा दिन सेवा करते हुए जहां क्राइसिस है, जहां डिजीज है, जहां डेथ है, जहां एक्सीडेंट्स है, जहां ट्रॉमा है, एनवायरमेंट। सो हीलर जो हीलर है वो सिर्फ पेशेंट के वाइब्रेशन से नहीं इन्फ्लुएंस हो रहा, वो पेशेंट के वाइब्रेशन से, पेशेंट की फैमिली के वाइब्रेशन से, हॉस्पिटल के वाइब्रेशन से, अपने आसपास के लोगों के वाइब्रेशन से, बिकॉज इट इज अ हाई क्राइसिस रीजन, इट्स अ हाई क्राइसिस रीजन। तो इसलिए ये जो इमोशनल इन्फेक्शन है, मतलब दूसरों का दुख दर्द चिंता पीड़ा, ये अब्सॉर्ब हो जाती है हमारी इमोशनल फील्ड के अंदर, हमारी एनर्जी फील्ड के अंदर, ये पता नहीं चलेगा। फिजिकल बीमारी तुरंत पता चलती है, पता चलती है और हमें पता चलता है, हाँ आज ना मैं इनसे मिला था ना, मुझे लगता है ये मुझे वहां से आई है चीज। तो फिजिकल बीमारी बहुत इजी होती है, खुद में भी पहले सिम्टम से ही पता चल जाती है, ध्यान कैसे रखना है वो भी पता है, और अगर कैच कर ली तो ये भी पता होता है आज किससे मिले थे उससे मैंने ये फिजिकल बीमारी कैच की है। इमोशनल बीमारी विच मीन्स ये लो वाइब्रेशंस, ये सिम्टम के रूप में दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ये लो वाइब्रेशंस हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं। ये ऐसे स्पेसिफिक नहीं दिखाई देगा, ओ मैं तो कल तक बहुत शांत था, आज मैं सडनली इतना जोर जोर से गुस्सा कर रहा हूं, तो मैंने किसी का गुस्सा कंज्यूम कर लिया है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट, इट हैपन्स वेरी 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 ग्रेजुअली, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन जो इतनी हाई थी, लेट्स से 80 थी, 90 थी, लेकिन रोज 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 हाई प्रेशर सिचुएशंस एंड नॉट द बेस्ट ऑफ वाइब्रेशन, तो वो 90 से 88, 85, 70, 60 ऐसे बहुत धीरे होती है, बहुत धीरे होती है। और जब ये धीरे धीरे होती है तो ये हमारे अंदर अलग अलग रूप से दिखाई देती है। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, थोड़ा सा डर आने लग जाता है, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लेवल कम हो जाता है, थोड़ा कभी कभी रूखे हो जाते हैं, हॉस्पिटल में सबके साथ अच्छे होते हैं लेकिन कभी कभी घर आके इरिटेट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें इतनी धीरे हमारे व्यक्तित्व में आती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से आ रही है, वी डोंट कम टू नो दैट ऑल्सो, ये हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये हो रहा है, ये सारा दिन हो रहा है, लेकिन हम क्या कह देते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, तो स्ट्रेस तो नॉर्मल है, उसको नॉर्मल कहकर हम उसको ठीक करने का कोई पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। यहां तक हम कहते हैं बर्नआउट भी हो जाता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, दूसरे कहते हैं तो नॉर्मल है ना, लुक एट द काइंड ऑफ वर्क, ना स्लीप साइकिल ठीक है, ना लाइफस्टाइल रूटीन सेट होती है, तो हम उसका जिम्मेवार किसी ना किसी बात को ठहराकर अपने ऊपर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेकर उसको नॉर्मल एक्सेप्ट करके, उसको एज अ पार्ट ऑफ द प्रोफेशन एक्सेप्ट करके उसके साथ जीना शुरू कर देते हैं, जीना शुरू कर देते हैं। तो लो वाइब्रेशंस जो हीलर ने कंज्यूम की वो हीलर की वाइब्रेशन को डाउन लेकर आता है, लेकिन अब वो हीलर दोनों मेरे पास खड़े हुए हैं, आई एम द पेशेंट, एक तो मेरे फैमिली मेंबर है लेकिन वो भी तो हीलर है ना, अब उनकी जो लो वाइब्रेशन है वो मेरी लो वाइब्रेशन पर असर करके मुझे और लो कर देती है। तो पहले मैं 40 पर थी लेकिन ये दोनों जब मेरे साथ खड़े रहे 15 मिनट, इनकी एनर्जी मुझे मिली, तो मैं 40 से 38 पर चले गए, 38 से 35 पर चले गए। ये मेरे मन की हीलिंग को स्लो डाउन करेगा, और अगर मेरे मन की हीलिंग स्लो डाउन हो गई तो मेरे शरीर की हीलिंग भी स्लो डाउन होनी शुरू हो जाएगी। सो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी डीप एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, कि एनवायरमेंट और पेशेंट्स की वाइब्रेशन का असर हीलर पर, और फिर हीलर के वाइब्रेशन का असर उसकी हीलिंग पर, मतलब पेशेंट्स की हीलिंग पर, ये सब एक कंटिन्यूस एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है, और इस सब को हमने नॉर्मल कह दिया। तो जो सबको इतना सुख देते हैं, सबकी जीवन, कितनों का तो भाग्य बदल देते हैं, कितने परिवारों का भाग्य बदल देते हैं, उनको सबका ध्यान रखते हुए सिर्फ एक छोटी सी चीज, अपना ध्यान रखना शुरू करना पड़ेगा। कभी भी ये न कहिएगा कि मेरे पास अपना ध्यान रखने के लिए टाइम नहीं है, दैट्स नॉट बीइंग फेयर, दैट्स चीटिंग योरसेल्फ। ये हमारी जिम्मेवारी है कि दूसरों का ध्यान रखने से पहले हमें अपना ध्यान रखना होगा। फ्लाइट में जब ऑक्सीजन मास्क नीचे आता है तो इंस्ट्रक्शन तो सबसे पहले यही सिखाई गई थी ना, कि पुट द मास्क ऑन योरसेल्फ फर्स्ट। पुट द मास्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। एंड आप भी फिजिकली तो वो करते ही हैं, अगर आपने किसी बीमार को देखना है चाहे वो कितना भी क्रिटिकल हो, आप अपना मास्क अपने ग्लव्स पहनना आप तो नहीं भूलते हैं। इसी तरह अपना यहाँ ध्यान रखना, इसको एक प्रायोरिटी बनाना है, इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना है। दिस इज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर सेल्फ। ये आपकी आपके अपने प्रति जिम्मेवारी है, ये आपकी आपके परिवार के प्रति जिम्मेवारी है, ये आपकी आपके कलीग्स आपके साथ जो डॉक्टर्स नर्सेस सेवा करते हैं उनके प्रति आपकी जिम्मेवारी है, दैट यू आर वाइब्रेटिंग एट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। एंड ये आपके प्रोफेशन के प्रति, आपके पेशेंट्स के लिए ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप उनके हीलर हैं। तो हीलर विल हैव टू बी एट द हाईएस्ट वाइब्रेशन फॉर हीलिंग टू हैपन एक्यूरेट एंड हीलिंग टू हैपन फास्ट। मन की हीलिंग, शरीर की हीलिंग तो परफेक्ट ही होती है, लेकिन मन की हीलिंग हो जाए उसके लिए हीलर की वाइब्रेशन भी, तो फिर क्या होगा, इट विल बिकम अ वेरी डिफरेंट एनर्जी एक्सचेंज। कि जो मैं वो पेशेंट हूं, मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन है, लेकिन मेरे आसपास जो दोनों हीलर्स खड़े हैं इनकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। अब इनकी वाइब्रेशन के संग में आने से मेरे मन को भी शक्ति मिलती है। Now this is going to be an opposite energy exchange. कि इनके वाइब्रेशन के संग में आने से मेरे मन को शक्ति मिलती है, तो जो 40 पर थी वाइब्रेशन वो 50 पर पहुंच जाती है, जो 50 पर पहुंच जाती है तो वो वाइब्रेशन इनको भी मिलती है, तो इनको डिप्लीट करने के बजाय उनकी भी शक्ति बढ़ जाती है। सो वी गो इन टू अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टूगेदर। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक जना चाहिए, एक जना चाहिए जिसकी इमोशनल इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसकी इमोशनल फिटनेस हाई होनी चाहिए, जिसकी इमोशनल वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए। एक जना चाहिए, विच मीन्स हर घर में एक चाहिए, हर टीम में एक चाहिए, आपके हॉस्पिटल में आपका जो यूनिट है उसमें एक चाहिए। इट हैज टू बिगिन विद वन, द पावर ऑफ वन। Please do not underestimate the power of one. Ek jana bahut kamal create kar sakta hai, because it has to begin with one. Kai baar hum sochte hain ek mere karne se kya hoga, mere aas paas to itni tension aur chinta hai sara din, mere karne se kya hoga. Agar sari batteries bhi thodi si discharged ho, ek charged battery mil jaye to kaafiyon ko charge kar degi, और फिर वो थोड़ा 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 चार्ज करते 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 फिर वो एक दूसरे को चार्ज करते 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 सारी बैटरीज चार्ज होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक को तो होना होगा। सो लेट्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई एम गोइंग टू बी दैट वन, आई एम गोइंग टू बी दैट वन, दैट वन जो खुद को एनर्जाइज करके अपनी वाइब्रेशन से सबकी हीलिंग करेंगे, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, चाहे वो फैमिली मेंबर है, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन एक टीम का हिस्सा है। हम सब लोगों की वाइब्रेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो जो हीलिंग हम अपनी करेंगे वो हीलिंग सिर्फ अपनी न रहकर बहुतों पर प्रभाव डालकर उनकी भी हीलिंग करती है। और जो हीलिंग हम अपनी वाइब्रेशन की करेंगे वो सिर्फ लोगों पर प्रभाव नहीं डालती, वो प्रकृति नेचर पर प्रभाव डालती है, वो सृष्टि प्लैनेट पर प्रभाव डालती है। आर वाइब्रेशंस हील द नेचर, आर वाइब्रेशंस हील द वर्ल्ड। कितनों की हीलिंग हो जाएगी सिर्फ अगर मैं एक अपनी हीलिंग करने शुरू कर दूं। आई वन स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, I become responsible, I become an instrument to heal many, 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 many other minds, bodies, nature and the world. Kyunki hamare man ek dusre se connected hain, ye energy fields ek dusre se judi hui hain. Kitni choti si cheez aur seva kitni sari, impact kitna zyada padega. Jab hum physically apna dhyan rakhte hain na, तो सिर्फ हमारे ही शरीर को बेनिफिट मिलता है, अगर आप अच्छी डाइट खाएंगे, आप रोज एक्सरसाइज करेंगे, तो सिर्फ आपका ही शरीर ठीक हो सकता है। उससे आपके वो करने से किसी और का शरीर हेल्दी नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप अपने मन का ध्यान रखेंगे तो बहुतों के मन पर प्रभाव पड़ेगा। सो इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी सी है लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसलिए अपने मन का ध्यान रखना, इसको प्रायोरिटी बना लेते हैं। लेट्स मेक इट अ प्रायोरिटी, नॉट एन ऑप्शन कि जब टाइम मिलेगा तो, क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं है, टाइम तो निकालना पड़ता है। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट। हम कहते हैं ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने सारे जो पेशेंट्स हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम सबके पास एक बहुत लंबी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट है। लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट में जो सबसे पहला नाम होना चाहिए वो अपना खुद का होना चाहिए। दिस इज नॉट सेल्फिश, दिस इज सेल्फ केयर। सेल्फ केयर सो दैट I can provide the best care to everyone around me. Self-care. So responsibility list में सबसे पहला नाम अपना होना चाहिए कि मेरा मेरे मन और शरीर के प्रति जिम्मेवारी है, responsibility है। Responsibility शब्द को ही देख लेते हैं, responsibility, responsibility। Response क्या है? हर situation में, हर scene में मेरी थॉट्स, मेरा वर्ड, मेरा बिहेवियर, आई रिस्पॉन्ड टू दिस सीन। अभी मेरे सामने कोई बात आए, आई हैव टू थिंक, आई हैव टू स्पीक, आई हैव टू बिहेव। ये जो तीन चीजें हम करते हैं हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, ये जो तीन चीजें हम करते हैं, दिस इज आवर रिस्पॉन्स। हमारी सोच, हमारा बोल, हमारा व्यवहार, ये हमारा रिस्पॉन्स है। ये एनर्जी है जो हमसे निकलकर बाहर जाने वाली है, ये हमारा कर्म है। दिस इज आवर रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब द अबिलिटी टू क्रिएट द राइट रिस्पॉन्स इन एवरी सिचुएशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द अबिलिटी। अब अगर हम कहें बात ही ऐसी थी इसलिए मुझे ऐसा लगा, सिचुएशन ही ऐसी थी इसलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस नहीं कर रहे। हम ये याद नहीं रख रहे कि माय अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इज माय चॉइस। हम कह रहे हैं वो थे ही ऐसे इसलिए मुझे ऐसा हो गया। दिस इज ऑपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब चाहे कोई भी बात हो बाहर, My ability to respond right, that is my responsibility. ये मेरी जिम्मेवारी है। और इसी से हमारी vibrations high रहती है, इसी से हमारा emotional immunity system high रहेगा। बातें तो सारा दिन में बहुत आनी है, आनी ही है। Situations हमारे अनुसार नहीं हो सकती, crisis सामने खड़ा है तो हमारे सामने बातें तो बहुत आनी है। लोग भी अलग अलग तरह से काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, बहुत बातें आनी है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी तैयारी करनी है। इसकी तैयारी हम सबसे पहले सुबह कर सकते हैं। सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम अपने सारा दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक कर लें। क्योंकि टिपिकली हमें पता होती है कि कौन सी बातें हमारे सामने आती रहती है। मतलब कोई केस आएगा, कोई पेशेंट आएगा, वो तो डिफरेंट होगा आज, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि हमने इनके साथ काम करना है, हमने इनके साथ रहते हैं, ये इनका संस्कार है, ये इनका काम करने का तरीका है। हमें ये भी पता है आज मेरे सामने पूरे दिन में ये वाली सर्जरीज लाइंड अप है। हमें ये भी पता है कि आज मुझे इन चार पेशेंट्स को देखना है। हमें मेजोरिटी चीजें अपने दिन की पता होती हैं। हमें ये भी पता है कि हमें रास्ते में ट्रैफिक में कितना टाइम लगने वाला है। तो लगभग अगर देखा जाए तो कम से कम 50-60% चीजें, शायद उससे भी ज्यादा, हमें आज के दिन की पता होती है कि आज मेरे सामने कौन कौन से सीन आने वाले हैं, ये हमें पता होता है। बहुत कम बातें होती हैं जिनके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। हमने कहा मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, I was not prepared for this situation. I'm getting, I was not prepared that something like this will come. तो हम उसके लिए prepared नहीं होते हैं. लेकिन अगर हम इसको 50-50, वैसे 50-50 होगा नहीं, वैसे तो 70-30, 80-20 उस रेशियो में चलता है, क्योंकि मेजोरिटी चीजें हमें पता होती हैं. तो अगर हम उन चीजों पर फोकस करें जो हमें पता है कि ये आने वाला है, ये होने वाला है, इन लोगों के साथ काम करना है, इन लोगों के साथ रहना है, ये बातें तो आज दिन में आने वाली है. वी नो दैट 50-60% ऑफ आर लाइफ टूडे, आज के दिन में मेरे सामने क्या क्या आने वाला है. अगर हम उन सीन्स में भी जो हमें पता है कौन से आने वाले हैं, अगर हम उसमें अपने रिस्पॉन्स का ध्यान रखें, जैसे जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, अब वो तो रोज सेम है ना, तो हमें उनके संस्कार पता है. लेकिन अगर हम अपने आप को चेक करें, कितने सालों से हम उनके साथ हैं, लेकिन आज भी हम उनके वही काम करने के तरीके पर, वही व्यवहार पर, वही संस्कार पर हम आज भी रॉन्ग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हम आज भी नाराज हो जाते हैं, हम आज भी इरिटेट हो रहे हैं, हम आज भी उदास हो जाते हैं, हम आज भी उनको शिकायत करते रहते हैं, उनको हम आज भी क्रिटिसाइज करते रहते हैं. वो स्टिमुलस तो सेम है, कुछ स्टिमुलस, कुछ सिचुएशन आएंगी जो डिफरेंट होंगी, लेकिन कम से कम जो सेम सिचुएशंस है, जो सेम स्टिमुलस है, उसके लिए तो अपनी तैयारी कर लेते हैं ना, वो तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा माइंड सही रिस्पॉन्स क्रिएट करना सीख जाएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा माइंड सही रिस्पॉन्स करना सीख जाएगा. जैसे फिजिकली आपके सामने मेजोरिटी बातें सारा दिन सेम है कि आपको पता है कि आपके ओपीडी में ये आएंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा. आपको ट्रेनिंग है कि आप ग्लव्स ऐसे पहनेंगे, हाथ ऐसे धोएंगे. यू ट्रेन्ड एंड यू डूइंग इट एवरी सिंगल डे. तो ये आपकी वो वाली स्टिम्युलस है जो आपको पता है कि आनी ही है, लेकिन क्योंकि आप उसमें रोज एक्यूरेटली इतना अच्छे तरह से राइट रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर अगर आपके सामने अचानक एक बहुत बड़ा क्रिटिकल केस आ जाता है, अचानक आता है एंड बहुत 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 क्रिटिकल होता है, लेकिन आप गलती से भी रॉन्ग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, मतलब आप वो जो पहनना है, जो प्रोटेक्शन करनी है, वो आप नहीं भूलते हैं. क्यों? क्योंकि रोज की नॉर्मल सिचुएशंस में उस तरह से रिस्पॉन्ड करने से वो आपकी हैबिट बन गई है, वो आपका संस्कार बन गया है. और जो चीज आपका संस्कार, आपकी हैबिट, आपकी प्रोग्रामिंग बन जाएगी, फिर अचानक से बहुत सी बड़ी सी बात आएगी, लेकिन आपका संस्कार पहले वर्क करेगा. संस्कार हैज गॉन इनटू एन ऑटोमेटिक मोड. वो संस्कार, आप कभी भी गलती से भी गलत तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. फिजिकल रिस्पॉन्स, क्या आपने जो करना था वो आपने नहीं किया. सिमिलरली इमोशनल रिस्पॉन्स की प्रेपरेशन हम उन सिचुएशंस में उन लोगों के बिहेवियर्स के साथ करें जो हमारे सामने रोज आने वाले हैं, रोज आ रहे हैं इतने सालों से. लेकिन अगर हम नहीं करें तो आप सोचो, जो इतने सालों से जिनके साथ हम रह रहे थे, उनके साथ भी अभी भी हम रिएक्ट कर रहे हैं, अभी भी हम रॉन्ग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अभी भी हम एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं उनके बारे में उस तरह से सोचकर, उनके साथ वैसा व्यवहार करके. तो जो अपनी नॉर्मल सिचुएशंस हैं, उनमें भी अगर एनर्जी घटाई, तो फिर अचानक वाली जो सिचुएशन आएगी उसमें राइट रिस्पॉन्स करना ये तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम तो नॉर्मल डेली सिचुएशन में सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे. तो दिस इज इमोशनल हेल्थ, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्डिंग राइट इन एवरी सिचुएशन, ये हमारी जिम्मेवारी है. तो हमें सुबह क्या करना है? हमारा सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो कम से कम आधा घंटा, आइडियली तो एक घंटा रखना चाहिए सबको, लेकिन कम से कम आधा घंटा अपनी वाइब्रेशंस को एनर्जाइज करने के लिए रखिए. मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल. शुरू शुरू में टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद तो वो नेचुरल हो जाएगा. तो कम से कम आधा घंटा सुबह। सबसे पहली चीज मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है अफर्मेशन प्लस विजुअलाइजेशन क्रिएट्स एन एक्सपीरियंस, एंड वो एक्सपीरियंस यहां एक इंप्रेशन की तरह रिकॉर्ड हो जाता है। एक अफर्मेशन, अफर्मेशन मीन्स सपोज हम एक अफर्मेशन लेते हैं कि आज सारा दिन में जो भी बातें आएंगी, जो भी सिचुएशंस आएंगी, आई एम अ काम स्टेबल सोल, आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल, ये हमारी अफर्मेशन है, ये हमारा संकल्प है। आई कोऑपरेट विद ईच वन, आई एम कंपैशनेट। कुछ एक संकल्प रोज ले लेंगे, ज्यादा नहीं लेते, रोज एक लेते हैं, वो अफर्मेशन लेकर हम उसको विजुअलाइज करते हैं। सपोज हमने अफर्मेशन लिया कि आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। अब सारा दिन में जो भी बातें आने वाली हैं, उनको देख लीजिए अपने सामने यहां पर। ऐसा नहीं कि उस बातों में ही हम फंस जाएंगे या उन बातों को याद करना शुरू कर देंगे, लेकिन रफली मोटा मोटा हमें कुछ कुछ बातें पता होती हैं सारा दिन की, उनको सुबह थोड़ा सा स्कैन कर लेते हैं। स्कैन मतलब हम एक प्रोग्रामिंग यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, ये वाली बात आएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी। हम अपने माइंड को सिखा रहे हैं कि इसमें हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो हम उस टाइम विजुअलाइज करेंगे कि ये वाला व्यक्ति आज मिलने वाला है, मालूम है मुझे, मुझे पता है कि उनका संस्कार मेरे से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं अपने आप को विजुअलाइज कर लो कि उनके साथ बात करते हुए, उनके साथ काम करते हुए, आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा व्यवहार, मेरा बात करने का तरीका वो ऐसे होगा। इसको प्रिपेयर करें, आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप आज की सिचुएशन में कैसे होने वाले हैं। यू आर प्रिपेयरिंग योर माइंड फॉर दैट इन द मॉर्निंग। तो पहले संकल्प क्रिएट किया, फिर उसकी विजुअलाइजेशन की। कुछ क्षणों के लिए उस संकल्प की विजुअलाइजेशन को देखते रहिएगा। वो विजुअलाइजेशन फीलिंग एक एक्सपीरियंस सा लगेगा, आपको फील होगा कि हाँ वो आएंगे, आई विल बी लाइक दिस। आपको वो एक्सपीरियंस होने लग जाएगा, जैसे आप अभी एक्सपीरियंस कीजिए। यू कैन डू इट राइट नाउ। आप एक्सपीरियंस कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। सामने लेकर आइए वो सीन कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। रेत को फील कीजिए, उन लहरों को फील कीजिए। फील द वॉटर टचिंग योर फीट। ये हम संकल्प कर रहे हैं और उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, और इसको अगर हम थोड़ी देर करते रहते हैं ऐसा, हम उसको फील करना शुरू कर देंगे और ये इंप्रेशन यहां रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। आप एक सीन देखिए, आप पहाड़ों में हैं, सूर्य अस्त हो रहा है, सनसेट को देखिए और पहाड़ों पर बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाइए। हवा को महसूस कीजिए, प्रकृति को महसूस कीजिए और वो सनसेट की वाइब्रेशंस को फील कीजिए। आप उस चित्र को देख पा रहे हैं, एंड जो अभी आप देख रहे हैं वो आपके ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है। अब तीसरे सीन पर चलते हैं। आप अपनी कार में हैं, ऑन द वे टू द हॉस्पिटल। अब उस सीन को देखिए, सुबह का 8 बजे का समय है, आसपास बहुत ट्रैफिक है। अपनी को अपनी गाड़ी में देखिए, चारों तरफ ट्रैफिक है, हिल ही नहीं रहा है, कुछ हुआ है शायद सड़क पर, जैम है। आसपास की एनर्जीज को फील कीजिए, उस सीन को देखिए एंड फिर अपने आप को देखिए वहां पर, आई एम अ पीसफुल बींग, आई एम अ पावरफुल बींग, मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय अपने मन को स्थिर रखना। और देखिए अपने आप को उस कार में बैठे फोन कर रहे हैं, जिसको मैसेज देना है वो दे रहे हैं, सर्जरी लाइंड अप थी उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो करना है, लेकिन एनर्जी, वाइब्रेशंस, बात करने का तरीका पीसफुल, इन कंट्रोल। चौथे सीन पर आते हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, आप ऑलरेडी लेट हैं। जैसे आप एंटर करते हैं, दो लोग आपकी तरफ भागते हुए आते हैं, पेशेंट की फैमिली भी भागते हुए आपके पास आती है, परेशान है, जोर जोर से कुछ कहना शुरू करते हैं, आई एम अ पीसफुल सोल, पावरफुल सोल। उनको समझाने से पहले मेरी वाइब्रेशन उनको हील कर रही है, क्योंकि ये वाइब्रेशन हम घर से और रास्ते में ध्यान रखते हुए हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। सी दिस सीन राइट नाउ, लेट इट गेट इम्प्रिंटेड ऑन द माइंड। वो नाराज है मेरे से, वो डरे हुए हैं, वो परेशान है बहुत, उन्हें ये नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो मेरी पीसफुल वाइब्रेशन के संग में आ गए हैं। उनका मन उस वाइब्रेशन के प्रभाव में आकर वो मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं मुझे, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई द पावरफुल सोल आई एम हीलिंग देम, मेरी वाइब्रेशंस उनके मन को हील कर रही हैं, मेरी वाइब्रेशंस मेरे साथ साथ चल रही हैं। सी योरसेल्फ वॉकिंग इन द कॉरिडोर ऑफ द हॉस्पिटल, एक एक कमरे को आप पास कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप चल रहे हैं आपके साथ आपकी एनर्जी फील्ड चलती है। वो एनर्जी फील्ड एक रिपल इफेक्ट है, उसकी तरंगे चारों तरफ फैल रही हैं। आई एम अ रेडिएटर ऑफ पीस एंड पावर, माई वाइब्रेशंस आर हीलिंग द एनर्जी ऑफ द हॉस्पिटल। ऐसे करते हुए अब आप उस ऑपरेशन थिएटर में पहुंचते हैं, शायद बहुत ही डिफिकल्ट, शायद अब तक का आपका सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस आपका इंतजार कर रहा है। सब कुछ सेट है, सब रेडी है, आपके असिस्टेंट्स रेडी हैं, इक्विपमेंट्स रेडी हैं, पेशेंट एनेस्थीशिया ले चुका है, सब कुछ रेडी है। अब आप वहां जाते हैं और एक मिनट के लिए साइलेंस में खड़े होते हैं। ये दृश्य को देखिएगा, भी विजुअलाइज दिस, यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द डे, और सब कुछ सेट है। अब अपने माइंड को भी हाईएस्ट वाइब्रेशन पर ले जाते हैं। आई एम गॉड्स एंजल, मैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूं, परमात्मा की शक्तियां मुझे यूज करके आज मुझसे ये सेवा कराएंगी सफलता इसमें निश्चित है। ये सर्जरी एक डिवाइन एक्सपीरियंस होगी। इसको आप सुबह विजुअलाइज कर रहे हैं एंड फिर आप अपने आप को देखिए उस सर्जरी में, सब कुछ हो रहा है, बाहर कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता है, कुछ सोचा नहीं था कि ऐसे बॉडी रिएक्ट करेगी, वो भी हो जाता है, लेकिन मन स्थिर है, शांत है, बिल्कुल इन कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर सीन में सही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप वापस इधर आ जाइए। ये हमने अभी क्या किया, हमने सुबह के समय बैठकर अपने दिन की तैयारी की। हम सारी चीजों की तैयारी करते हैं, हमें अगर कुछ बहुत मुश्किल केस आज हैंडल करना है, हम दूसरे डॉक्टर से भी बात कर लेते हैं, हम कभी कुछ स्टडी भी कर लेते हैं कि शायद कोई और बात आई हो, कहीं दुनिया में किसी और ने इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड चीज की हो, मैं उसकी एक्सपीरियंस से भी सीख लूं, विच इज ऑल्सो सो सो इम्पोर्टेंट। एंड आप सब दिन रात वो मेहनत करते हैं, लेकिन सब कुछ बाहर मेहनत कर रहे हैं, साथ साथ कुछ क्षणों के लिए। ये बहुत कम टाइम लगने वाला है इसका, लेकिन इसका जो प्रभाव है, इसका जो इन्फ्लुएंस है, दैट्स नथिंग लेस देन अ मिरेकल। सबसे पहला प्रभाव आपके खुद के मन पर, खुद के शरीर पर, क्योंकि ये करने से आपने अपने आप की वाइब्रेशंस को बहुत ऊंचा उठाया है। अब आसपास की वाइब्रेशन आपको नीचे नहीं खींच सकती, आप आसपास की वाइब्रेशन को ऊपर उठाने वाले बन गए हैं। बिकॉज यू आर अ रेडिएटर ऑफ पीस एंड पावर, यू हैव क्रिएटेड दैट। तो ये करने से आप सारा दिन अपने आसपास की वाइब्रेशन से बचे रहेंगे और आप आसपास की वाइब्रेशन को भी बढ़ाते जाएंगे। तो सुबह का समय कम से कम 10-15 मिनट हमें मेडिटेशन के लिए रखने हैं। आप मेडिटेशन सीखेगा भी जरूर। इन सेशंस के बाद आप सबके लिए राजयोग मेडिटेशन कोर्स भी होने वाला है, उसको सीखिएगा जरूर। उसमें हम क्या सीखते हैं, अफर्मेशन प्लस विजुअलाइजेशन इज इक्वल टू एक्सपीरियंस। ये एनर्जी क्रिएट होती है, ये इंप्रेशन रिकॉर्ड होता है, फिर ये एनर्जी रेडिएट होती है और वही सारा दिन में मैनिफेस्ट हो जाता है। मेडिटेशन में हम परमात्मा, सुप्रीम पावर जो दाता है, सर्व शक्तियों का दाता है, कल्याणकारी है, उस सर्व शक्तिवान से हम कनेक्ट हो जाते हैं, उसको याद करते हैं और उसको विजुअलाइज करते हैं कि उसकी सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में भर रहे हैं। चलिए एक क्षण के लिए अभी वो सीन को विजुअलाइज करते हैं। अपने आप को देखिए, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड द एनर्जी द बीइंग, मैं आत्मा, आई एम अ पावरफुल बीइंग। और फिर विजुअलाइज कीजिए कि आपके सर से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा ऊपर देखिएगा, another point of light, परमात्मा, सर्वशक्तिवान, शांति का सागर, उसकी सर्वशक्तियां मुझ आत्मा पर भर रही हैं। विजुअलाइज कीजिए परमात्मा से शक्तियों की किरणें आत्मा पर आ रही है, वाइब्रेशंस फ्रॉम द सुप्रीम पावर टू मी द पावरफुल बीइंग। इसको विजुअलाइज कीजिए, शक्तियां वहां से आ रही हैं, मुझे आत्मा पर पड़ रही हैं, लाइक अ रेज ऑफ द लाइट, जैसे सूर्य की किरणें आती हैं वैसे परमात्मा की शक्ति की किरणें यहां पड़ रही हैं। फिर विजुअलाइज कीजिए कि वो शक्ति की किरणें मेरे चारों तरफ एक डिवाइन एनर्जी सर्कल बना रही हैं। आई एम प्रोटेक्टेड बाय गॉड्स पावर्स। अपने आप को एक हाई वाइब्रेशनल डिवाइन एनर्जी सर्कल में देखिए। व्हाइट लाइट का सर्कल मेरे चारों तरफ है। मैं परमात्मा की शक्तियों से सुरक्षित हूं। आई एम प्रोटेक्टेड बाय द हाईएस्ट वाइब्रेशन। कोई भी लोअर वाइब्रेशन इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते अब। आई एम प्रोटेक्टेड बाय द हाईएस्ट वाइब्रेशन। तो ये है खुद को विजुअलाइज करना, खुद को याद रखना कि मैं कौन हूं, एंड फिर परमात्मा को याद करना। परमात्मा से बात करें, अपने आज के दिन में जो जो शेड्यूल्ड है वो सब कुछ उसको बता दे। कोई राय लेनी है वो क्वेश्चन भी उसको बता दे। लेकिन आज सारा दिन में क्या क्या करने वाले हैं वो जरूर उसको बताइए और उसको इन्वोक कीजिए। वी हैव टू इन्वोक गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स कि वो हर चीज में हमारे साथ रहेगा, आज हर केस में हमारे साथ रहेगा, हर पेशेंट के इलाज में हमारे साथ रहेगा। आप सब बहुत स्किल्ड हैं, बहुत अनुभवी हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। आपकी परख, आपका डायग्नोसिस हमेशा राइट होता है क्योंकि ये तो आपका व्यक्तित्व बन चुका है, ये आपके अनुभव है। लेकिन फिर भी हर पेशेंट अलग होता है। शरीर की बीमारी एक जैसी हो सकती है लेकिन मन और संस्कार हर एक के अलग होते हैं। तो इसलिए सबका इलाज करने के लिए और सबके मन को सुकून देने के लिए वो ईश्वरीय शक्ति को अपने पास इन्वोक कीजिए कि आप मेरे साथ रहेंगे। आज मुझे इतने लोगों से मिलना है, आज मुझे ये सर्जरी करनी है। वो आपके बच्चे हैं जो आए हैं, सारे परमात्मा के बच्चे हैं ना, तो वो आपके बच्चे हैं जो आए हैं। ये मेरा भाग्य है जो आप मुझे यूज कर रहे हैं इनको सेहत और सुख देने के लिए। लेकिन आप मुझे गाइड करेंगे, आप मुझे यूज करेंगे, मैं सिर्फ आपका इंस्ट्रूमेंट हूं और आप मुझे यूज करके उनको संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण सुख देंगे। मैं आपका निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूं। तो परमात्मा से बात कीजिए, चाहे वो आपके जो केसेस हैं आज जिन जिनका इलाज करना है उसके बारे में, चाहे व्यक्तिगत जीवन के बारे में, चाहे परिवार के बारे में, उससे बात कीजिए। तो मेडिटेशन मीन्स अ वेरी वेरी प्योर डिवाइन ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद द सेल्फ। अपने आप के साथ रिश्ता जोड़ना, अपने मन को समझना, अपने सोचने के तरीके को समझना और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की शक्ति को बढ़ाना और उसके लिए परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना और ईश्वर की वो शक्तियों और गुणों को, परमात्मा के ज्ञान को और परमात्मा के साथ को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। तो कम से कम 15 मिनट 20 मिनट हमें ये सुबह मेडिटेशन जरूर जरूर करना चाहिए। फिर कम से कम 20-25 मिनट द राइट डाइट फॉर द माइंड, ये बहुत जरूरी है आपके लिए भी और आप जिनको मिलते हैं सारा दिन उनको भी ये जरूर बताइएगा। क्योंकि आजकल हम दुनिया और दुनिया की बातों से बहुत कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। इट्स लाइक हम जंक फूड बहुत खा रहे हैं। आजकल हमें बहुत खबरें मिलती रहती हैं, यहां से, इधर से, उधर से, दुनिया की खबरें, देश की खबरें, आस पड़ोस की खबरें, हॉस्पिटल में जो हो रहा है उसकी खबरें, खबरें, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन। लेकिन इतनी सारी खबरें, इतना सारा कंटेंट, इसकी भी एक वाइब्रेशन है। अगर वो खबरों में भी टेंशन है, गुस्सा है, क्रिटिसिज्म है, रिडिक्यूल है, मजाक है, ये सब वाइब्रेशंस जो कंटेंट की वाइब्रेशंस होंगी, इनका भी हमारे ऊपर असर पड़ेगा। तो तो इतनी सारी खबरों के बीच कम से कम थोड़े समय के लिए सुबह अच्छी खुराक भी खा लेनी चाहिए। इमोशनल डाइट फॉर गुड इमोशनल हेल्थ, कम से कम 20 मिनट सुबह हम प्योर डिवाइन कंटेंट, हाई वाइब्रेशनल कंटेंट, व्हिच मींस कंटेंट जो परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा के दिए हुए महावाक्य जो सर्व शक्तियों से भरे हुए हैं, जिससे हमारे अंदर कंपैशन, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, इसका संस्कार स्वतः ही बनता जाएगा, क्योंकि वो हमारी इमोशनल हेल्थ वैसे बन जाएगी क्योंकि हमने वो डाइट वैसी भरी है। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत सुंदर तरीका है संस्कार परिवर्तन का। चार सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान, योग, ये दो चीजें हम सुबह कर लेते हैं। जैसे हमने मेडिटेशन किया पहले 15 मिनट, फिर हम ज्ञान 15-20 मिनट अपने अंदर भरेंगे, तो मतलब डाइट भी ले ली और एक्सरसाइज भी कर लिया फॉर द सोल। ये दोनों चीजें हैं, ज्ञान और योग। कई बार हम सोचते हैं बस मैं मेडिटेशन कर लूं तो मुझे डाइट की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। और कोई सोचते हैं कि मैंने ज्ञान तो सुन लिया, मुझे मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। हमें दोनों चीजों की जरूरत है। ज्ञान हमें सोचने का तरीका सिखाती है और मेडिटेशन हमें शक्ति देती है ताकि जो हमने समझा, जो हमने यहाँ भरा, वो उसको हम प्रैक्टिकल में सारा दिन लेकर आएंगे। द पावर टू इम्प्लीमेंट व्हाट वी नो इज राइट, जो हमें मालूम है। हमें मालूम है गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें मालूम है क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हमें मालूम है हमें बातें बुरी नहीं लगनी चाहिए, हमें मालूम है बहुत कुछ। लेकिन हम क्या कहते हैं, क्या करें, हो गया, आ गया। वो शक्ति की कमी है, तो वो शक्ति हमें मेडिटेशन से मिलती है। तो ज्ञान और योग दो सब्जेक्ट्स। तीसरा सब्जेक्ट जो सारा दिन में हमने भरा है सुबह, उसको हम सारा दिन में इम्प्लीमेंट करेंगे। कि सुबह हमने विजुअलाइज किया, सुबह हमने स्टडी किया, फिर हम थोड़ा सा अटेंशन सारा दिन में रखेंगे कि हम उस तरह से प्रैक्टिकल में व्यवहार करेंगे, उस तरह से एक दूसरे से बात करेंगे, उस तरह से सोचना शुरू करेंगे। तो धारणा, तो ये धारणा पर सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन रखना होता है, बाकी जो सुबह भरा था और विजुअलाइज किया था वो आना ही है प्रैक्टिकल में, लेकिन थोड़ा अटेंशन। तो धारणा और सेवा, सेवा मतलब मुझसे वो वाइब्रेशन सबको रेडिएट हो, वो सेवा तो ऑटोमेटिकली होती जाएगी। सो ज्ञान, योग, धारणा एंड सेवा, ये चार पिलर्स हैं, ये चार पिलर्स हैं ऑन विच स्पिरिचुअलिटी स्टैंड्स। कि ज्ञान भरें, स्टडी करें, योग मेडिटेशन करें, धारणा प्रैक्टिकल में उसको लेकर आए, और सेवा कि हमारे से सबको वो मिले, वो तो अपने आप होता रहेगा। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है, जहां स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स क्या है, हमारे संस्कार और हमारे कर्म, वो हमारी प्रायोरिटी रहे। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स कि हमारे संस्कार और हमारे कर्म हमेशा हाईएस्ट वाइब्रेशन के रहे, सब कुछ करते हुए, सबका ध्यान रखते हुए, हमेशा ये प्रायोरिटी पे रहे कि मेरा कर्म श्रेष्ठ है, एक्यूरेट है, इसमें कोई और मिलावट तो नहीं हो रही है, मेरी अपनी ईर्ष्या, मेरी अपनी इच्छाएं, ये चीजें मिलावट तो नहीं कर रही, मेरा अपना गुस्सा, मेरा अपना ईगो, ये मिलावट तो नहीं कर रहा मेरे कर्म में। सो माई कर्म हैज टू बी द हाईएस्ट वाइब्रेशन, एलिवेटेड कर्म, एलिवेटेड कर्म। तो संस्कार और कर्म हमारी प्रायोरिटी रहे हमेशा, क्योंकि यही यहाँ पर रिकॉर्ड होता जा रहा है, यही हमारी हीलिंग करता है, और जो हमारी हीलिंग करता है वो वाइब्रेशन सबकी हीलिंग करता है, हमारे शरीर की हीलिंग करता है, दूसरों की हीलिंग करता है, प्रकृति की हीलिंग करता है, सृष्टि की हीलिंग करता है, जो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल प्रिंसिपल्स, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और एक छोटी सी चीज, ताकि ये चारों पिलर्स जो हमारे हैं वो स्ट्रांग रहें, वो है जीवन में प्योरिटी, सात्विकता, सात्विकता, शुद्ध अन्न, शुद्ध अन्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अन्न का असर मन पर होता है। ये भी चार लेयर्स होती है, धन, अन्न, मन और तन। कि हमारा धन दुआओं के साथ आता है, आपको तो आपके धन के साथ बहुत दुआएं मिलती हैं क्योंकि दूसरों को सुख दिया है ना, उनका भाग्य बदला है तो आपको बहुत दुआएं मिलती हैं। तो धन दुआओं के साथ आए, अन्न सात्विक हो, मन का रोज सुबह एनर्जाइज करने का ध्यान रखें, और शरीर का तो ध्यान रखते ही हैं, लेकिन जब धन अन्न और मन सात्विक होता है तो शरीर स्वस्थ रहना सहज हो जाता है। तो लेट्स एक्सपेरिमेंट विद द सात्विक लाइफस्टाइल, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आज दिन तक मेडिकल साइंस ने, डॉक्टर्स ने, क्योंकि वो आपकी पढ़ाई में लिखा गया है एंड आपके पास उसका भरपूर साइंटिफिक एविडेंस है, आप ऐसे ही नहीं कह रहे सिर्फ पढ़कर, आपको पता है कि वो जो एनिमल प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो ह्यूमन बॉडी को जरूरी है। ये सच है, दिस इज रियल, एब्सोल्युटली रियल है ये, और इसीलिए तो आपने सबको बताया, या आप में से मेजोरिटी ने कहें सबको बताया कि ये हेल्दी होता है। लेकिन अब हम उसको दो लेवल ऑफ हेल्थ पे चेक कर लेते हैं, एक फिजिकली हेल्दी होता है और दूसरा क्या वो इमोशनली हेल्दी होता है, क्या वो इमोशनली हेल्दी होता है, क्योंकि हमें हीलिंग तो दोनों की करनी है ना, मन और शरीर की भी हीलिंग करनी है। तो जो प्रोटीन्स, जो न्यूट्रिएंट्स हमें उससे मिलते हैं, उस एनिमल प्रोडक्ट से, वो तो शायद और भी बहुत सारी चीजों से मिल जाते हैं। तो आप हमें वो सिखाएंगे कि हमें कहां कहां से वो प्रोडक्ट्स, वेजिटेरियन जो है, जिनसे हमें वो सारे प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, और आप सिखाते भी हैं, सिखाते भी हैं, हम सबको आपने ही सिखाया है। लेकिन साथ साथ अगर आप ये भी बताना शुरू करें, और वो आप तब बताएंगे जब वो आपका अपना अनुभव होगा कि ये जो एनिमल प्रोडक्ट है ये किसी के दर्द से आया है हमारे पास, वो प्रोटीन्स तो है लेकिन उसमें किसी का दर्द है, उसमें किसी का दुख है, उसमें किसी की हेल्पलेसनेस है, उसमें किसी का डर है। एनिमल्स के भी वही फीलिंग्स होती हैं, वही थॉट्स होते हैं, उनके भी शरीर में हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं उस इमोशन से। तो क्या वो चीज हमारे लिए इमोशनली हेल्दी हो सकती है? और अगर वो हमारे लिए इमोशनली हेल्दी नहीं है तो क्या वो हमारे लिए फिजिकली भी सही मायने में हेल्दी हो सकती है? ये हमें चेक करना होगा। वी नीड टू थिंक अबाउट इट, वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वी नीड टू एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट करें सबसे पहले अपने लिए कि जैसा अन्न वैसा मन। तो वो जो अन्न हम खाएं, हीलर्स हैं, सबकी सेवा करने वाले हैं, हाईएस्ट वाइब्रेशन सबको देने वाले हैं, तो वो जो अन्न आप स्वीकार करें वो प्रसाद की वाइब्रेशन का होना चाहिए, परमात्मा की याद में बना हुआ खाना होना चाहिए, उसके अंदर हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी होनी चाहिए। भोजन वो नहीं हो सकता जिसमें किसी का दुख, दर्द, किसी की हिंसा, किसी की मृत्यु हो। वो वाइब्रेशंस हेल्दी कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? तो लेट्स एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिजल्ट मिलेंगे, और रिजल्ट जब मिलेंगे, एक्सपीरियंस जब मिलेगा, वो एक्सपीरियंस से सबके साथ शेयर कर सकते हैं, सबको ये ऑप्शन तो दे सकते हैं कि हाँ इसमें प्रोटीन है लेकिन इसमें ये वाइब्रेशन भी है। हमें तो कंप्लीट नॉलेज देनी है ना सबको। आजकल आप सबको कहते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पेशेंट को देनी है, तो ये भी तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पेशेंट को मिलनी चाहिए कि इसमें ये न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन इसमें ये वाइब्रेशंस हैं और कुछ और चीजें हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन जिसके वाइब्रेशंस ठीक हैं और आप उसको परमात्मा की याद में बनाकर और उसके वाइब्रेशंस को एनर्जाइज कर सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ वाइब्रेशंस के बारे में बताना, ये भी तो साइंस है, ये भी तो साइंटिफिक है कि एनर्जी क्या है उस चीज के, ये भी तो हमें बताना होगा ना सबको। लेकिन वो हम तब बताएंगे जब हम खुद उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब हम खुद उसको एक्सपीरियंस करेंगे। सो एज हीलर्स हम कोई भी चीज ऐसी ना खाएं, ना पिए, ना कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस ऐसा यूज करें जो हमारी वाइब्रेशन को नीचे लेकर आता है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी हीलिंग करना और अपनी वाइब्रेशन से सबकी हीलिंग करना। तो इस वीक में जो राजयोग कोर्स स्टार्ट होने वाला है आप जरूर करिएगा, घर बैठे कर सकते हैं आजकल ऑनलाइन, और फिर उसके बाद तो जब सेंटर खुलेंगे तो आप सेंटर पर आइएगा, मेडिटेशन सीखिएगा, वो स्पिरिचुअल स्टडी, वो खुराक परमात्मा जो सिखा रहे हैं, परमात्मा सर्वशक्तिवान जो ज्ञान दे रहा है, उससे अपनी सोच, नजरिया, भावनाएं, शब्द और व्यवहार श्रेष्ठ बनाएंगे और खुद का ध्यान रखते हुए फिर सबकी सेवा करेंगे। हीलिंग द हीलर फर्स्ट एंड देन हीलिंग एवरीवन हु कम्स इन योर एनर्जी फील्ड। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर शिवानी का, जिन्होंने इतने सुंदर विचारों को हमारे साथ शेयर किया। हम सबको अपने आप को हील करने का, हीलर होकर दूसरों को हील करने से पहले अपनी हीलिंग पर अटेंशन देने के इस नायाब तरीके को हमारे सामने प्रेजेंट करने के लिए और हम सबके साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, माइंड बॉडी मेडिसिन के इस कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन की सुबह के सत्र में हम यहीं आपसे विदा लेंगे। शाम के सत्र में फिर मुलाकात होगी कुछ और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल। नमस्कार।